मायजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् एहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसायने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे सर्वे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपतयम् समन्तप्रियायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषः आन्ताधात् परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येषः श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्नगृहे आदिक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासद इति ॐ विश्वतश्च सुरद ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्याम् धमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः
सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे विल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वम् पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ॐ शाङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्रीकृष्णाय नमः यथा लब्धोपचारमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि तुलस्यावर रामचन्द्र की जय मोर्मुकुटवंशी वाले की जय बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय बोले वेदव्यास जी महाराज की जय
कृष्ण गोविंद हरे
Krishna Govinda Hare
तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। योऽस्योत्प्रेक्षकवादिमध्य निधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यः सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरःशास्तिता यं सम्पद्य जहत् त्यजा मनुषै सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदस्रं हरिम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् आनन्दधामनिचिदेकरसे द्वितीये तस्मिन् पदेस्तु मम चित् तमगोचरेऽपि यत्सद्व्रजस्थितिजुषां स सुहृदां कुमारादीनामधीनमिव गोचरतामुपैति यावन् निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्तरिदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घनानंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पावन श्री चरणार बिंदों में कोटिशह प्रणाम कर भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण एवं परम भागवत संत महापुरुषों को कोटिशह सादर प्रणाम कर श्रीमद् भागवत में आस्था रखने वाले हैं समस्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं का सादराभिवादन कर आज श्रीमद् भागवत के पाक्षिक कथा क्रम में भगवान के स्थूल स्वरूप इस जगत के वर्णन के साथ कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का आप लोग जो रसपान कर रहे हैं उसमें आपने अनेक विषयों पर विचार किया होगा। भागवत के अधिकारी कैसे पुरुष होते हैं, भागवत का परम साधन क्या है, इस सृष्टि का मूल आधार कौन है और जीव के चारों पुरुषार्थों में परम पुरुषार्थ क्या है, इत्यादि विषयों को सुनने के पश्चात पंचम स्कंद में भगवान का एक बहुत विलक्षण पराक्रम आपने सुना। ऋषभ देव के रूप में भगवान ने अवतार लिया और उनके पुत्र राजर्षि भरत भगवान के परम भक्त हुए, पर साथ साथ में एक थोड़ी सी आसक्ति से भक्ति में बड़ी बाधा पड़ी। ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं तब कभी कभी हमारे परम आत्मीय जन भगवान की भक्ति करने में घबरा जाते हैं। उनके मन में ऐसा आता है कि भाई हमारे में परिपक्व भक्ति तो होती ही नहीं, भक्ति करेंगे भी तो गलती कहीं हो जाएगी, राजर्षि भरत की हो गई, तो ऐसी भक्ति करेंगे तो हमें क्या लाभ होगा। परंतु ऐसे प्रसंग क्यों बताए जाते हैं, ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में से प्रमाद मिटाने के लिए बताए जाते हैं। राजर्षि भरत ने देखा कि मैंने पुत्रों का त्याग कर दिया, राज्य का त्याग कर दिया, एकांत में भजन करता हूँ, मेरी तो साधना ठीक हो गई, पूरी हो गई। पर जिस प्रकार से शरीर का ऑपरेशन होता है तो एक बहुत जानकार डॉक्टर उसको देखता है, उसके सामने शरीर का ऑपरेशन दूसरे लोग करते हैं, ऐसे ही ये हमारे जीवन का ऑपरेशन है। इसमें संत है, महापुरुष है, उनके बीच में बैठ करके उनके सामने हमारे जीवन की जो कोई बुराई है, जो कोई बात है, वो उनके सामने रखनी चाहिए। राजर्षि भरत ने भक्ति की सब किया लेकिन सत्संग नहीं किया तो छिपा हुआ कहीं आसक्ति का छांटा लग गया और वे हिरण में आसक्त होकर हिरण योनि में आ गए। क्या उनकी भक्ति यूं ही गई कि यूं ही नहीं गई? हिरण शरीर में भी उनकी भक्ति सुरक्षित थी। देखो, एक विषय को दोनों तरफ से देखना चाहिए। सिक्का होता है, उसको दोनों तरफ से देखना चाहिए कि खरा है कि खोटा है। ऐसे दोनों तरफ से देखो, एक तो इसमें ये हम लोगों को बल मिलता है कि जितनी हम भक्ति करते हैं वो भक्ति अगले जन्म में हमारे लिए सुरक्षित रहती है। एक हिरणी के बालक में आसक्ति रह गई, दोबारा जन्म हुआ तो वो आसक्ति के त्याग के लिए तो जगह मिल गई, लेकिन भगवान की जो भक्ति की है वो भक्ति का कोई फल मिलता है क्या? भगवान की भक्ति का फल नहीं मिलता, भगवान की भक्ति से भगवान ही मिलते हैं। क्योंकि फल मिलता है वो तो थोड़ा मिलता है, हम जो क्रिया करते हैं उस क्रिया का फल होता है वो थोड़ा मिलता है, परंतु भगवान हमारे भजन के फल में नहीं मिला करते। क्योंकि भगवान भजन की अपेक्षा छोटे होते हैं तब तो हमको मिल जाते हैं, पर भगवान हमारे भजन की अपेक्षा बड़े महान है। तो हमारे जड़ भरत जी का ना राजर्षि भरत जी का भक्ति का जो क्षेत्र था वो कैसा विचित्र है कि उसका कोई फल नहीं मिला उनको, लौकिक फल, क्योंकि फल देने से भक्ति नष्ट हो जाती। जितने कर्म है उनके कर्मों का फल सामने आ जाने पर नष्ट हो जाता है। वो सरकार में 50 वर्ष नौकरी की, सरकार ने उनको महीने के महीने तनख्वाह दी और उसके बाद जो कुछ उनको देना सब दे दिया, उसके बाद वो ये नहीं कह सकता कि हमने सरकार की बहुत सेवा की है। सरकार कहेगी सेवा हुई है, तुमने परिश्रम लिया है भाई, पारिश्रमिक लिया है तुमने, परिश्रम दिया तो पारिश्रमिक लिया। ऐसे भगवान भक्ति के बदले में कुछ देते नहीं है, भगवान भक्ति के बदले में खुद ही आते हैं, वो भी बदले में नहीं आते, वो कृपा करके आते हैं। तो हमारे जड़ राजर्षि भरत की भक्ति किसी भी फल में परिणित नहीं हुई और वे राजर्षि भरत हिरण योनि में आए, वहां वे सूखे पत्ते खाते थे, भगवान का भजन करते थे, और वे जड़ भरत में आए तब भाई उन्होंने सत्संग किया, खूब सत्संग किया, रहुगण के साथ में बैठकर उन्होंने खूब अच्छा सत्संग के द्वारा उपदेश दिया। भागवत में कई जगह सत्संग की जाद में बिचती है, हर प्रसंग में सत्संग होता है, परंतु हर जगह कहीं कहीं नई बात, कहीं कहीं नई बात ही आती है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें चली वहां और संसार को एक जंगल के रूप में बताया। ये पांचवा स्कंद है, ये भगवान के विजय का स्कंद है, पराक्रम का स्कंद है। ये भगवान की कैसी विशेष महत्ता की बात है, स्थितिर वैकुंठ विजय, वैकुंठ माने भगवान, उनकी जो विजय है, उनका जो जो है प्रभाव है ये पांचवें स्कंद में क्या बताया प्रभाव। उनका प्रभाव पहली पहले तो भक्ति के द्वारा बताया कि देखो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। सबसे पहले सत्संग चलता है प्रिय व्रत का और नारद जी का, फिर चलता है प्रिय व्रत का और ब्रह्मा जी का, ये भक्ति हुई। और दूसरी बात है भक्ति से एकदम एक प्रसंग बीच में उल्टा आता है आग्निंद्र का, जो प्रियव्रत का पुत्र था उस आग्निंद्र का पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ प्रेम होना, बिल्कुल उल्टा है। और फिर नाभि का भगवान से प्रार्थना करना और भगवान का ऋषभ देव के रूप में अवतार लेना, फिर ऋषभ देव जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना, और फिर राजर्षि भरत का भक्ति का प्रभाव और जड़ भरत का रहुगण को ज्ञान देना, ये सब क्या है, ये वैकुंठ विजय है, भगवान की विजय, बहुत विलक्षण पराक्रम की बात है ये। कि क्या पराक्रम है कि पांचवें स्कंद में सृष्टि का जब और थोड़ा वर्णन आएगा, अभी कहते हैं ये प्रतिपद नष्ट होने वाली सृष्टि है, प्रतिक्षण नष्ट होने वाली है। इस प्रतिक्षण नष्ट होने वाली सृष्टि में देखो कैसे हमको स्थैर्य मिला है भक्ति करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। आपको हमको मालूम है कि ये पृथ्वी भी नाश की तरफ जा रही है, और ये पृथ्वी है ये कहाँ खड़ी है मालूम ही है, ये पृथ्वी समुद्र के अंदर है, ये माने समुद्र की सतह तो ऊंची है और पृथ्वी नीची है, फिर भी डूब नहीं रही है। ये आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि समुद्र की सतह से ये ऊंचा है, बिल्कुल ऊंचा है। तभी भगवान कहते हैं गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, मैं इस पृथ्वी को धारण करता हूं। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी वास्तव में मैं धारण नहीं करूं, आप एक छोटा सा कंकर एक कटोरी में पानी रख करके उसमें डालिए, वो कंकर नीचे पड़ जाएगा, पानी के पैंदे में चला जाएगा, उसके कटोरी के पैंदे में चला जाएगा। इतनी भारी पृथ्वी है और से कितना बड़ा समुद्र है, उस समुद्र के अंदर स्थित है ये पृथ्वी, डूबी नहीं है। ये भगवान का विलक्षण प्रभाव, और उससे भी ज्यादा प्रभाव क्या है कि ये यहाँ पृथ्वी पर आए हुए मनुष्य का सत्संग आदि के द्वारा कल्याण हो जाना। रहुगण ने थोड़ा सा सत्संग किया, कल्याण हो गया। हमारे सामने जीवन में जन्म जन्मांतर के पापों के फल आते हैं, और कल्याण होता वो एक जन्म में और थोड़े से सत्संग करने से हो जाए, भगवान का पराक्रम नहीं तो क्या है, ये भगवान की विजय नहीं तो क्या है। ये प्रसंग सुनते सुनते हमारे परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि प्रियव्रत ने जो सात समुद्र बनाए थे उससे सात द्वीप हो गए, ये तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है सृष्टि, मैं इसके विस्तार के विषय में सुनना चाहता हूँ। तब हमारे सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि भैया अब इस सृष्टि का विस्तार तो देवताओं की उम्र में भी नहीं सुन सकते, तुम्हारी तो अब आयु घट भी गई, जब से तुम भागवत सुनने चले हो तब से तुम्हारी आयु क्षीणी हो रही है। सप्ताह की कथा के अंदर तो ये आज तीसरे दिन की कथा है, इसलिए भगवान के विशाल स्थूल स्वरूप का तुम वर्णन सुनना चाहोगे नहीं सुन सकते, पूरा कह ही नहीं सकता कोई। मोटे मोटे रूप में मैं तुमको जरूर बता देता हूँ कि ये जो सबसे पहले जम्बू द्वीप है जिसमें प्रियव्रत राजा हुए, फिर जिसके आग्निंद्र राजा हुए, फिर जो है नाभि राजा हुए, जहाँ जड़ भरत हुए, जहाँ ये राजर्षि भरत हुए, ये सब जो राजा लोग हुए इन्होंने जम्बू द्वीप में शासन किया, उनके विषय में जरूर बता सकता हूँ। जम्बू द्वीप आदि के विषय में कि इस जम्बू द्वीप के अंदर जो है नौ द्वीप हैं, और नौ द्वीप भी कैसे हैं कि आठ पर्वतों के द्वारा विभक्त हैं। तीन पर्वत तो उत्तर में है, तीन पर्वत दक्षिण में है, एक पर्वत पूर्व पश्चिम को लिया हुआ है, एक पर्वत जो है वो उत्तर दक्षिण को यूं लिया हुआ है। एक पश्चिम दिशा में पवित्र पर्वत, एक पूर्व दिशा में पवित्र पर्वत, ऐसे करके तीन पर्वत तो उत्तर में और तीन पर्वत दक्षिण में, बीचों बीच यहाँ एक सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत इन सब से अलग है और ये इलावृत खंड एक बीच में पड़ता है, समचौरस है वो, इलावृत खंड के ठीक बीच में है। अब इस सुमेरु पर्वत से सब दिशाएं मानी जाएंगी, तो इलावृत खंड है, इसके बीच में सुमेरु पर्वत, इसके उत्तर में तीन पर्वत है जिसमें तीन देशों का निवास, रम्यक हिरणमय पुरुष और कुरुवर्ष। ऐसे ही इलावृत से तीन देश और पीछे है, दक्षिण में है जिसमें भारतवर्ष आता है, और बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत के ऊपर चार बड़े बड़े और पर्वत है, जो मंदर पर्वत, मेरु मंदर पर्वत, सुपार्श्व और कुमुद, ये चार पर्वत है। इन चारों पर्वतों के ऊपर चार बड़े बड़े वृक्ष हैं, जिसमें मंदर पर्वत है उसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है। वो आम जब पककर के नीचे गिरता है उस समय में उसके रस से वहां अरुणोदा नाम की नदी बहती है, उस नदी के अंदर पार्वती की सेविकाएं स्नान करती हैं और उस नदी के जल का सुगंध, वो मतलब आम के रस का सुगंध 40 कोस तक फैलता रहता है। ऐसे ही मेरु मंदर पर्वत के ऊपर पर्वत शिखर के समान मोटे मोटे जामुन के फल होते हैं, वो जामुन के फल जब पक करके नीचे गिरते ही वो फूटते हैं, तब उनसे एक रस निकलता है और वो मिट्टी से मिलता है तो वो सोना बनता है, उसको जांबुनद बोलते हैं। कैसा ये भगवान का विचित्र प्रभाव है भाई, अपने लोगों के बस की बात नहीं है। देखो ये जितने वर्ष यहाँ बताए ना, इन वर्षों को कोई देखने चलेगा यंत्रों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अभी जो पृथ्वी हमको दिखाई देती है वो बहुत थोड़ी सी पृथ्वी दिखाई देती है, बहुत थोड़ी पृथ्वी है, बहुत बड़ी पृथ्वी बाकी पड़ी है जहाँ हमारी लोगों की गति नहीं है, बता देंगे आगे। सुपार्श्व के ऊपर वहां पर एक कदम्ब का वृक्ष है, उस कदम्ब वृक्ष से अनेक प्रकार की चीजें निकलती रहती है। ऐसे ही कुमुद पर्वत के ऊपर एक वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष से अन्न गुड़ धान वस्त्र आदि सब वहाँ उत्पन्न होते रहते हैं। इन वृक्षों के फलों का सेवन करने पर शरीर में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती, बुढ़ापा आना, चेहरा उतर जाना, सफेदी आ जाना, शरीर आदि में पसीने की दुर्गंध वगैरह आना, ये कुछ नहीं होता। इसके अलावा भी जो है ये सुमेरु पर्वत है, इसके 20 पर्वत और हैं उसकी सहायता करने वाले। इसको यदि व्यष्टि जगत में देखना है, व्यष्टि जगत में देखना है तो अपने शरीर में देखिए, ये अपना सिर भाग है, इस सिर भाग से जुड़ती हुई यहाँ एक हड्डी है, लंबी ठेठ तक हड्डी, बैठते वहां से मेरी हड्डी, इस हड्डी के ऊपर ये देखो ये और हड्डी का भाग है। ऐसे ही जो ये सुमेरु पर्वत है, ये 16 योजन तो जमीन में है और 84 योजन ऊंचा है। ऊंचा होने पर ये यहाँ जो ऊपर स्थान है, ये ऊपर स्थान, इसमें कई प्रकार की हड्डियां आकर के जुड़ करके भार ज्यादा होता है यहाँ, तब इसको यहाँ वहां की हड्डियां सब देखो, इधर की हड्डियां जाकर उधर से जुड़ती है, ये पास की हड्डियां जा करके ये जो हमारी बड़ी हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, उसके साथ कई हड्डियां जुड़ती है। और ठीक सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी का स्थान बताते हैं, ये ब्रह्मा जी का स्थान है। ये इसी को ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं, ये ब्रह्मा जी का स्थान है, इसको सात कौम भी बोलते हैं। और जिस समय में भगवान ने वामन रूप में आकर के त्रिविक्रम रूप बनाया था, तब भगवान ने इस ब्रह्मांड में एक छेद किया था, वहां से बाहर से जल आया, वो जल सीधा ब्रह्मलोक में आया पहले ही पहले। यहां से आने के बाद वो यूं चार भागों में बट गया जल, एक तो यूं पूर्व में, फिर पश्चिम में, और फिर इधर उत्तर में और दक्षिण में, ऐसी चार उसकी नदियां हुई और चार ही उसके नाम हो गए। परंतु मैं आप लोगों को विशेष बात बताना चाहता हूं परीक्षित, इस भारतवर्ष की, कि ये भारतवर्ष है यही एक कर्म क्षेत्र है और बाकी सब पृथ्वी के स्वर्ग क्षेत्र है। देखो पृथ्वी के स्वर्ग और पृथ्वी के नरक और आकाश के स्वर्ग आकाश के नरक, ऐसे सब जगह स्वर्ग है सब जगह नरक है। तो ये पृथ्वी का जो है भारतवर्ष तो है कर्म क्षेत्र और बाकी सब है स्वर्ग क्षेत्र, क्योंकि वहां मनुष्य की आयु खूब लंबी चौड़ी होती है। भारतवर्ष के अलावा वहां एक बार स्त्री गर्भ धारण करती है तो उस समय में उसको त्रेता युग का जितना समय लगता है, त्रेता युग का समय, जैसे त्रेता युग में 3600 दिव्य वर्ष होते हैं, तो 3600 दिव्य वर्ष तक उस समय में ये स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, जीवन में एक बार ही गर्भ धारण करती हैं, और वो त्रेता युग समय तक अपने गर्भ में उसको रखा करती है। इस प्रकार से ये सब भारतवर्ष के अलावा जितने देश हैं वो स्वर्ग देश हैं। आप भारतवर्ष के नाम से अभी जो नक्शे में भारतवर्ष देखते हैं उतना ही मत देखना, ये अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, अफ्रीका है, ये चीन वगैरह सब, इस समय जो पृथ्वी आदि सब भारतवर्ष है ये। नहीं तो बताओ वहां पर 10-10 हजार वर्षों की कोई आयु थोड़ी है। आयुत पुरुषायुर वर्षाणाम देव कल्पानाम नागायुत प्राणानाम, और एक एक के अंदर 10-10 हजार हाथियों का बल होता है, वो कहां है, यहां अमेरिका के आदमी में है नहीं है। तो ये सब भारतवर्ष ही है हमारा। पर सबसे बढ़िया बात यह है कि मैं तुमको ये 9 द्वीप के विषय में बता रहा था, उसमें सबसे बढ़िया बात है कि सब जगह भगवान की आराधना होती है। सबसे पहले हम इलाव्रत खंड में ही ले गए, इस इलाव्रत खंड में भगवान जो है शंकरषण की उपासना शिवजी करते हैं। शिवजी बोलते हैं कि वाह शंकरषण जी, आपका तो चरण है वो पूजनीय है, और भक्तों के लिए आपका जो ये वरद हस्त है ये पर्याप्त रहता है। भवाप हम त्वा भव भावम ईश्वरम, संसार को पैदा करने वाले आप और संसार के आसक्तियों को दूर करने वाले आप, आपका वरद हस्त पर्याप्त रहता है, और आपकी माया वृत्ति संसार में कहीं आसक्त नहीं होती। संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है पर आपका इससे कोई संबंध नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड को आप अपने सिर पर धारण करते पर आपको कोई कष्ट नहीं होता। किसी आदमी के सिर के ऊपर बाजरी का दाना रह जाए या मिट्टी का दाना रह जाए, बाजरी का भी दाना राई का दाना है सिर पर पड़ा रहे, तो क्या कोई अपने को वजन मालूम देता है, पता ही नहीं चलता। ऐसे ब्रह्मांड आपके फणों पर विराजमान रहते हैं, सिद्ध सिर पर रहते हैं, परंतु आपको किसी प्रकार से थकावट महसूस नहीं होती। हम सब आपके वैसे ही वश में रहते हैं जैसे पिंजड़े के अंदर पक्षी वश में रहता है। आपके द्वारा बनाया हुआ जो सृष्टि का मर्यादा रूप जो क्रम है उसको ज्ञानी लोग तो पहचानते हैं, मूर्ख लोग उसमें फंस जाते हैं, इसलिए उनको इस सृष्टि से पार होने का उपाय नहीं दिखता है। ऐसी इलाव्रत खंड में शिव है वो शंकरषण की उपासना करते हैं। ये प्रसंग क्यों चल रहा है कि जो जहां है वो वहां से उपासना करता है तभी वो श्रेष्ठ है, वो स्थान श्रेष्ठ है, वो शरीर श्रेष्ठ है, वो देश श्रेष्ठ है, वो काल श्रेष्ठ है। ऐसे ही भद्राश्व वर्ष में भद्रश्रवा है, यमराज जी का बेटा, वो हयग्रीव भगवान की उपासना करता है। और वो भद्रश्रवा बोलते हैं कि महाराज आपकी लीला को दुनिया जानती नहीं है। देखो एक खास बात बताए बड़े रहस्य की, ये जो जितनी स्तुतियां अब बताई जा रही है ना, ये केवल स्तुतियां ही नहीं है, ये मंत्र भी है। वो आप देखो जहां से मंत्र कौन होता है जिसमें ओम नमः लगता है, ओम नमः लगता है और अंत में इति लगता है। आप जितने ये यहां से स्तुतियां चालू हुई है जिनके पास भागवत है वो देखिए, एक एक जने ओम नमः से चालू होता है और दो तीन चार श्लोक जितने बोलते हैं उनसे उनके पर इति आता है, इति आता है, इति सबके नीचे इति आएगा। आप चलते जाइए देखते जाएगा सबके साथ इति आएगा। एक तो पंक्ति में इति आता है, वो पंक्ति वाला इति नहीं, जैसे ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः इति, ये नहीं, ये तो इति है ही। इसलिए प्रसंग जहां पूरा होगा तस्मै नमस्ते विदथे हिताय इति, वो इति है। ये यहां तक एक मंत्र माना गया है भागवत है ना, ये कल्पद्रुम का फल है ना। तो शास्त्र के अंदर जो मंत्र वगैरह आते हैं भागवत इनसे खाली कैसे रह जाएगा। तो इन मंत्रों के द्वारा बड़ी शक्ति संचित होती है। पर ये मंत्र की बात कहते ही आप लोगों के मन में है कि हमारा कोई काम करना और कोई मंत्र बता दो और हमारा ये काम सिद्ध हो जाए, तो भाई वो भागवत की महिमा नहीं है। ये मंत्र किस काम में आते हैं, ये स्तुतियों के मंत्र हैं। आप इनमें से लेकर किसी की स्तुति करो, आपका भगवान का अनुराग बढ़ जाएगा। ये इस काम के लिए है, लौकिक काम के लिए क्या है, संसार का काम बन जाएगा तो भी बिगड़ेगा वो, और बिगड़ा है वो भी बिगड़ा है कोई बात नहीं। कितना ही संसार का काम आप सुधार लो, कितना ही बढ़िया कर लो, अंत में तो बिगड़ेगा। बढ़िया परिवार, बढ़िया पत्नी, बढ़िया बेटा, बढ़िया साधन, बढ़िया सब कुछ जीवन, पर एक दिन बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा वो संसार का बढ़ियापन तो बिगड़ जाएगा। और ये जो परमात्मा का रास्ता है जिसमें जितना काम हम बना लेंगे उतना वो सुधरावा अंत तक काम आएगा, केवल ही शरीर नहीं, शरीर के बाद भी काम आएगा। तो इन मंत्रों का उपयोग करना हो तो लौकिक सिद्धियों के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। किसी को हयग्रीव भगवान की उपासना करनी हो तो इन मंत्रों का जो है अनुष्ठान किया जाए, पाठ किया जाए। अर्थ यह है कि हे प्रभु आपकी लीला का कोई पार नहीं है। कहते हैं सब संसार नाशवान है कि हाँ साहब संसार नाशवान है, हम लोग रोज बोलते ही है, माइक से बोलते हैं, इतने लोगों के बीच में बोलते हैं, मरना पड़ेगा कि हाँ साहब मरना पड़ेगा। परंतु क्या हम खुद जागरूक हैं इस बात से, क्या हमारे अंदर इस बात की जागृति है कि वास्तव में हमको मरना पड़ेगा। भीतर में जागृति हो तो भाई उसका भाव और का और हो जाता है। बाबा जी ने कहा, एक बाबा जी थे मस्ती से चल रहे थे, मस्ती से एक सेठ का लड़का आया, बाबा जी की मस्ती देखी तो उसके मन में आया कि देखो इस बाबा के पास न तो खाने के लिए, न पहनने के लिए, न रहने के लिए कोई जगह, कोई प्रबंध नहीं, पर मस्ती कैसे आ रही है इसको मस्ती। तो उस सेठ के बच्चे ने पूछ लिया कि महाराज आपके मस्ती कैसे आ गई है। मस्ती मस्ती की मेरे पास दवाई है, एक दवाई। तो गलत दवाई तो मुझे दे दो महाराज, मैं भी मस्त होता। हाँ ले लो, वो दवाई दे दी, दवाई दे दी। और कहा साहब कैसे ले उन दवाई को, पानी के साथ ले लो। तो पानी के साथ ले लिया। अब क्या महाराज, अब क्या करना है मुझे, कि कुछ नहीं करना, तीन दिन में मर जाएगा तू, तीन दिन में मर जाएगा। क्या बाबा जी मैंने मस्ती के लिए दवाई ली थी, आपने मृत्यु की दवा दी, कोई जहर दे दिया क्या कि भाई अब है मस्ती की दवाई पूछे, हमने तुमको मस्ती दी, तीन दिन में मर जाओगे, मरने के बाद मस्ती मस्ती है, मर जाओगे फिर खूब मस्ती है। बाबा जी तो चले गए। वो अपने पिताजी के पास आया कि एक बाबा मिलेगी, तू भी कैसा आदमी, हर बाबा से दवाई ले लेता है। बाबा का क्या पता भाई, एक कहावत है तो अटपटी के कूटे हुए चूर्ण का पता नहीं कैसा है और मुंडे हुए माथे वाले का पता नहीं कैसा है। ये कौन है, क्या है, इसका क्या है, कोई पता नहीं, ठिकाना नहीं। तो कूटे हुए चूर्ण का पता नहीं और माथे मुंडे में माथे वाले का पता नहीं कौन है, तू कैसे चक्कर में आ गया। अब तो हो गया, सब तो हो गया, अब क्या होगा, मरना पड़ेगा, और क्या है। अब वो बच्चा क्या करे, सेठ का बच्चा, उसको नींद नहीं आए, रोटी न भाए, वो देखता है तीन दिन में मर जाऊंगा। उस सेठ की खूब चलती थी फैक्ट्रियां, उस फैक्ट्री के कागज लाओ, वो लाओ, वहां साइन कर देते हैं, वो कर देते हैं, ये चेक पर साइन है, ये कागजों पर साइन है, ऐसे करके वो काम सलटाने में लगा। एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन में पूरा काम सलटा दिया, सलटा दिया। अब भाई अब आज तीसरा दिन है, आज तो मरना है, तो भाई वो मरना है, ऐसे वो सावधान हुआ। तो करते 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 तीन दिन हो गए, वो मरा नहीं। चौथे दिन बाबा जी उसी मस्ती से, उसी के घर के सामने से सेठ ने बुलाया कि बाबा जी इधर आओ। बोलो साहब, आपने हमारे लड़के को दवाई दी थी। हाँ दी थी। किस लिए दी? कि मस्ती के लिए दी थी। मस्ती के लिए दी तो मरने के लिए दी? आपने तो कहा तू मरेगा, तो हम यही बात बोलते हैं, हम तो आपका बेटा जीवित है क्या? जीवित है कि जीवित नहीं, वो तो मर गया। कहाँ मरा? जा करके बाबा जी मिले। बाबा जी ने कहा कि तूने तेरा सब काम सलटा दिया ना? कि बिल्कुल सलटा दिया। ये बस जो अपना सब काम सलटाया हुआ होता है, जो अपनी मृत्यु को देखता है और समझता है कि संसार में मैं कुछ भी करूंगा तो भाई अंत में ये रहेगा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, मकान, दुकान, फैक्ट्री कुछ नहीं रहेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा, ये मन में हरदम विचार रहे, इसी का नाम तो मस्ती है भाई। कोई ये थोड़े ही तेरे कोई प्राण देने के लिए मेरे को जहर थोड़े ही दिया था, कोई दवाई नहीं है तो कोई दवाई है ही नहीं, तो तुलसी की गोलियां है, मैंने तुमको तुलसी के पत्ते की गोलियां दी थी, उससे कोई मरता थोड़े ही है। तेरे मन में एक बात बैठाई कि मरना पड़ेगा, उस मरने के अगले मरने को पहले से ही जो समझ लेता है बस वो सावधान रहता है, वो मस्ती में रहता है। तो हमारे भद्रश्रवा बोलते हैं कि वदन्ति विश्वम कवयस्म नश्वरम पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चित। सब जानते हैं, सब कहते हैं मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, अच्छी तरह से सोच समझ करके बोलते हैं, फिर भी तथापि मुह्यन्ति तवाज माया, फिर भी इस माया से मोहित तो होते रहते हैं, मरने की बात करते हैं और जीने का संकल्प मन में बनाए रखते हैं, जीने का लालच, संत बोलते थे जीने का लालच, जीने का लालच बनाए रखते हैं और मरने की बात बोलते हैं। बताओ कैसी विचित्र आपकी ये माया है महाराज। आपने देखो हे हयग्रीव जी, आपने कितना बढ़िया काम किया कि ये वेद थे, ये ब्रह्मा जी से चुरा लिए गए थे, आपने इनकी रक्षा की है। ये देखो 24 अवतारों में, वहां पहले स्कंद में तीसरे अध्याय में जहां गणना की वहां हयग्रीव नहीं आए, वहां पर नहीं बताया, यहां बता दिया। हरिवर्ष में भगवान नृसिंह की उपासना की जाती है और प्रहलाद जी महाराज वहां उनके उपासक होकर के एक बात बोलते हैं कि हे प्रभु, हे नृसिंह भगवान, ये आपके नाखून वज्र के समान कठोर क्यों है? आपके ये दांत है, ये दांत भी बड़े कठोर है, कठोर क्यों है? क्योंकि आपका अवतार हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नहीं हुआ है। कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना। आपका अवतार केवल हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नहीं हुआ है महाराज, आपका अवतार इसलिए हुआ है कि ये जीवात्मा जन्म जन्मांतर के बहुत बहुत पापों को इकट्ठा कर लिया, अब उन पापों से इस जीव को निकालना है, तो वो बहुत कठोर चिकटे पाप है, उनको नाखूनों से आप काट काट करके और दांत से आप उनको दूर कर करके साफ करने के लिए कठोर दांत और ये कठोर नाखून बनाए हैं, जिससे इसकी कर्म राशि समाप्त हो जाए। कर्माशयान रंधय रंधय, तमो ग्रसय ग्रसय, अंतःकरण में बहुत अंधकार है। तब आप इन तीखी तीखी आंखों से देखते हो, आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, सिंह की आंख देखो कैसी होती है। तो हमारे इस अंधकार को आप ग्रस लो, ग्रस लो, ग्रस लो, और कहा महाराज इस विश्व का कल्याण हो। और जो व्यक्ति दुष्ट है उनका स्वभाव दुष्ट है, उनका दुष्टता का स्वभाव दूर हो जाए, वो भी आनंद में डूबे रहे। लोग एक दूसरे का भला चिंतन करें, बुरा चिंतन न करें, क्योंकि बुराई का फल बुराई होगा, वो अपने को भोगना पड़ेगा। दूसरे का बुरा होगा कि नहीं होगा, दूसरे का बुरा करेंगे तो अपना बुरा पहले होगा। और संसार में कहीं हमारी आसक्ति न रहे। जिसके अंदर भगवान की भक्ति है, आपकी भक्ति है, उसमें सारे गुण है। और हरऊ अभक्तस्य कुतो महत गुणा, आपकी भक्ति नहीं है तो महाराज उसमें गुण भी नहीं है। क्यों? मनोरथे ना सती धावतो बही, अपनी कल्पनाओं के द्वारा वो दूर बार बार ही दौड़ता है। वो धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, बाहर दौड़ना है, क्योंकि आत्मा से बाहर है। और अपने आत्मा ही आत्मा में रहना है, ये भक्ति के अंदर डूबना है। जब तक ये महाराज मनुष्य राग द्वेष से ग्रस्त रहता है, तब तक संसार रूपी घर से इसका छूटना बड़ा मुश्किल है महाराज। इसलिए आपके चरणों का आश्रय निर्भय करने वाला है। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी उपासिका है और कामदेव भगवान है वो उपास्य है। और वो कहते हैं, अब देखो इसमें मंत्र की बातें आती, क्या ओम रीम, ओम राम रीम रूम, ये क्या चीज होती है? रीम है, क्लीम है, ये मंत्र में बीज मंत्र होता है। बीज बीज मंत्र में देखो आप, ये जो राम रीम रूम ये क्या होता है? ये अवगुणों को संकटों को हरने के लिए ये ओम रीम क्लीम ये आता है। ये क्लीम आता है वो प्रेम करने के लिए आता है। मंत्रों के अंदर ये चीज होती है, भगवान में प्रेम करना हो, कैसे करो तो रास पंचाध्याय में बता देंगे। और जो हमारी आफत दूर करनी हो उसमें रीम शब्दों का प्रयोग होता है। और कहा कि महाराज ये जो संसार की स्त्रियां हैं, तरह तरह का व्रत पालन करके और लौकिक पति की इच्छा करती है, महाराज लौकिक पति इनको सर्वथा निर्भय बना नहीं सकता। और ये स्त्रियां उस लौकिक पति में आपको पति मान करके उपासना करें, उनकी सेवा करें कि मैं मेरे पति की जो सेवा करती हूँ तो मेरे पति कौन है? कि मेरे पति का जो ये बाह्य शरीर है इसमें परमात्मा विराजमान है, वो मेरे पति है। कितनी बढ़िया बात बताए ये लक्ष्मी जी कि पति के प्रतीक में आपकी सेवा करनी चाहिए। जैसे स्त्री है वो पति के गोत्र में अपना गोत्र मिलाती है, पति के घर में रहती है। देखो स्त्री कितना त्याग करती है पति के लिए, अपने माँ बाप का त्याग करके घर में आती है और पति का गोत्र अपना गोत्र बना लेती है और पति के लिए समर्पित रहती है। ये है अपने स्त्री का धर्म। तो कहते हैं इतना तो करती है, पर उस पति के अंदर आपकी भावना की जाएगी, ये पति है, ये मेरे भगवान है। पुरानी माताएं बोलती थी ऐसा, अपने पति के लिए पत्नी पति नहीं बोलते थे, अपने धनी नहीं बोलते थे, वो कहते मेरे भगवान अभी बाहर गए हुए हैं, मेरे भगवान अभी आएंगे तब बात करूंगी, मेरे भगवान। क्या शब्दावली थी, माने पति के अंदर भगवत्ता का दर्शन करना, ये मेरे भगवान। तो पति की सेवा से भगवान की सेवा होगी ही, क्योंकि आपकी भावना ऐसी है। तो केवल पति को शरीर से मानना ये अपराध है। जैसे गुरु होता है, गुरु को मनुष्य मानना अपराध है, ऐसे पति को भी मनुष्य मत मानो, पति के अंदर भगवान की भावना करो। कहते स्वभाव अच्छा नहीं है क्या करें, स्वभाव अच्छा नहीं है ये स्वभाव देखने का अधिकार हमको नहीं है। उनका स्वभाव अच्छा नहीं है तो स्वभाव अच्छा नहीं है, भगवान तो है ही। भगवान का स्वभाव क्या सबको अच्छा लगता था क्या? भगवान राम का स्वभाव क्या सबको अच्छा लगा संसार में? भगवान कृष्ण का स्वभाव क्या सबको अच्छा लगा? इतने बैरी क्यों खड़े होते भगवान राम के सामने, कृष्ण के सामने? एक भी ऐसा अवतार बता दीजिए कि जहां भगवान ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया हो। तो भगवान के स्वभाव को सभी ने पसंद नहीं किया है, जिनका हृदय दूषित है उन्होंने भगवान के स्वभाव को पसंद नहीं किया, लेकिन भगवान तो है ही। हम पति का स्वभाव देखती है कि भी पति का स्वभाव अच्छा नहीं है तो ये ठीक नहीं है। सवई पति सद अकुतो भयम भय स्वयं समन तथा पाति भया तुरम जनम। महाराज असली पति तो वो है कि जो हमको सर्वथा निर्भय कर देवे, और वो है आपका स्वरूप। लक्ष्मी जी कहते हैं मेरी प्राप्ति के लिए अजेश सुरा सुरादय है, सुर असुर ब्रह्मा आदि सब मेरी प्राप्ति के लिए दौड़ते रहते हैं, बड़ा बड़ा तप करते हैं और अपने इंद्रियों को खूब लगाते हैं कि भाई मुझे लक्ष्मी मिले, मुझे लक्ष्मी मिले। पर महाराज त्वद हृदय, मैं तो आपके हृदय में रहने वाली हूँ, और भवत पाद परायणात आपके चरणों का शरण लेने के कारण से मैं आपको छोड़कर के कहीं जाना नहीं चाहती। हे लक्ष्मी जी बोलती हैं कि हे भगवान आप अपना वरदहस्त मेरे सिर पर रख दीजिए, मेरे सिर पर रख दीजिए। विमर्शि माम लक्ष्मण वरेण माया क ईश्वर से हित मुहि तुम विभूरिति। आप ऐसा अपना वरदहस्त रख दोगे तो महाराज मेरा आपके शरण में आना सफल हो जाएगा। देखो हम लोग जो है ना लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं, भगवान कहते हैं लक्ष्मी तो हमारे घर में रहने वाली है। आप लक्ष्मी पति की आराधना करोगे तो लक्ष्मी की तो वहां उपस्थिति अपने आप ही हो जाएगी। आप कभी किसी आदमी को अपने घर पर बुलाते हो कि आज हमारे घर पर भाई कोई गोष्ठी है, भोजन है, आप आओ, तो भाई अब क्या आप देंगे तो आदमी के नाम से पत्र, पर वो आदमी और अपने घरवाली को लेकर आएगा। ऐसे ही एक भगवान की आप आराधना करने लग जाओ आप हम सभी, तो भगवान के साथ में लक्ष्मी जी पीछे रहने वाली नहीं है। जितने महात्मा हुए हैं उनके भगवान में प्रेम बढ़ जाने के बाद उनके वहां कोई कमी नहीं रहती है किसी चीज की, किसी चीज की कमी नहीं रहती। महापुरुष कहा करते थे भाई कि हमारे यहां किसी भी वस्तु की क्या पड़ोस तक जो है वस्तु का अभाव नहीं होता, हमारे पड़ोस में भी, क्योंकि मन से तो वो कोई अभाव स्वीकार करते नहीं। और जो है लक्ष्मी जी उदारता से अपने भक्तों का ध्यान रखती है। क्यों रखती है? कि लक्ष्मी जी पतिव्रता है, जो उनके पति से प्रेम करते हैं उनसे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है। रम्यक वर्ष में लक्ष्मी ये महामत्स्य की उपासना होती है, और हिरणमय वर्ष में कूर्म भगवान की, कछुए भगवान की उपासना होती है, और वहां उपासक हैं हमारे अर्यमा जो पितृगणों के स्वामी हैं। वो अर्यमा बोलते हैं कि महाराज संसार में जरायुज स्वेजज अंडज उद्भिद चार प्रकार के प्राणी ये सब आप ही हो, देवता ऋषि पितर ये भी आप ही हो, आकाश पृथ्वी जल समुद्र सब आप हो, आपने ही अनेक रूपों से अपना नाम कर रखा है। उत्तर कुरु वर्ष में वराह भगवान की उपासना होती है और पृथ्वी उनकी उपासिका होती है। वाह महाराज कैसा आपका विलक्षण रूप है, आपका स्वरूप तो जानने वाले ही जान सकते हैं। देखो जिस आदमी की रुपए पर दृष्टि होती है ना, वो आदमी हर जगह रुपया देख लेता है, हर जगह रुपया देखता है। यूं ही देखेगा यूं, गांधी मैदान की ये जगह है साहब, ये कितनी है ये साहब, इतने करोड़ रुपए की जगह है साहब, 2 करोड़ रुपए की जगह, ओहो 2 करोड़ रुपए की जगह। अब बताओ इसमें एक पैसा भी नहीं है, यहाँ पंडाल बना है साहब, इस पंडाल में कितना रुपया लग गया, ये इतने रुपए का पंडाल बना है, अब इसमें एक पैसा भी चिपका हुआ नहीं है, लो लकड़ है, लकड़ है, लो है। पर पैसे का जो ध्यान, पैसे को जो समझता है ना, वो पैसे का ध्यान कर रहा है। इसको सफाई करेंगे, इस गांधी भवन को साफ साफ करवाएंगे तो भाई कितना पैसा लग जाएगा, ये सब कचरा उठाने में अपना 10,000 रुपया लग जाएगा, 10,000 रुपये का समझ लिया पहले ही। कोई कचरा पड़ा है वहां से उठा करके जाए वहां डालना है, कितना पैसा लगेगा, इस कचरे को वहां डालने में 25,000 रुपया लगेगा साहब। तो देखो कचरे में पैसा देख लिया, साग सब्जी में पैसा देख लिया, लून लकड़ा में पैसा देख लिया, लू में पैसा देख लिया, पैसे पर दृष्टि रहती है वो सब जगह पैसा देखता है, एक में भी पैसा नहीं है, कचरे में एक भी पैसा नहीं है। अरे तुम्हें क्या पता, हमें पता है इसमें ये कितने का माल है, जो हमको पता है कचरा होता है वो कहते हैं इसमें क्या है हमको पता है। हीरो में जो है पैसा देख लेता है और कोयलों में पैसा देख लेता है, ऐसी बात बोलती है पृथ्वी कि महाराज यस्य स्वरूपो कवयो विपश्चितो गुणेषु दारिष विविदात मेदसम। जिस प्रकार से लकड़ी में आग है लेकिन उस लकड़ी में आग को हम लोग बिना युक्ति से देखना चाहेंगे तो आग नहीं मिलेगा, करोती लेकर के आप इस लकड़ी को काटो देखें लकड़ी के अंदर आग दिखी आएगी क्या? अरे आग तो है लेकिन ऐसे आग नहीं है, ऐसे आप आग को प्रकट, और तो कैसे कैसे लगे बताओ, हमको बताओ लकड़ी में आग कैसे, हम लकड़ी को देखो चीरते हैं इसमें आग आनी चाहिए, नहीं आएगी आग, चाहे आप कितनी लकड़ी को चीरा लगा दो आग पैदा नहीं होगी, क्योंकि ये तरीका नहीं है। आपका स्वरूप छिपा हुआ रहता है, गूढ़म आपका शरीर, आपका स्वरूप छिपा हुआ रहता है, उसको जानकार आदमी जान सकते हैं और दूसरे नहीं जान सकते हैं। और आपकी माया कैसी विचित्र है, जैसे चुंबक है वो पड़े हुए लोहे को हिला दे, लोहा पड़ा है यहाँ, चुंबक लिया वो उठा लो कर लो, इधर रख दो उधर रख दो, लोहे लोहे को चुंबक हिला देता है, हिलता हुआ दिखता है। ऐसे महाराज आपके कारण से ये माया है, ये संसार को बनाती है। माया यथायो भ्रमते तदाश्रयम ग्रावणो नमस्ते गुण कर्म साक्षिणे, ऐसे ही आप संसार को बनाते हैं, पालते हैं, पोषते हैं और फिर इसका संहार करते हैं, इसमें माया काम करती है। किम पुरुष वर्ष में भगवान राम की उपासना हनुमान जी करते हैं, हनुमान जी के साथ में किम पुरुष भी आते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि महाराज आपने जो रामावतार धारण किया था वो केवल स्त्री के लिए रोने में नहीं किया था, आप केवल स्त्री को आप रोने लग गए ये दिखाने के लिए नहीं था, आप दुनिया को भक्ति दिखा रहे थे, भक्ति कैसी बड़ी होती है। नहीं तो यदि आप स्त्री के लिए रोते और केवल स्त्री के लिए रोते ही ना, तो आप सीता के मिलने के बाद उसको फटकारते नहीं और उसको अग्नि में प्रवेश कराते भी नहीं, अग्नि में प्रवेश करवाया भगवान ने, जाओ अग्नि परीक्षा ली। क्यों भाई, क्यों ली अग्नि परीक्षा, दुनिया को ये बताने के लिए कि मैंने स्त्री के लोभ में आकर के रावण को नहीं मारा है। मर्त्यावतार स्वीह मर्त्य शिक्षणम, मनुष्यों के बीच में अवतार लेकर मनुष्यों के सामने एक आदर्श उपस्थित करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है, मनुष्यों को ये बताने के लिए कि मेरी भक्ति करने वाला होता है मैं उसकी भक्ति करता हूँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। और आपने बंदरों की सहायता ली, आप कमजोर थे क्या कि बंदरों की सहायता ली आपने, आपने दुनिया को ये बताया कि मेरी भक्ति करने वाला यदि बंदर भी होगा तो भी वो भक्त हो जाएगा, बंदर भी होगा तो। ऐसे महाराज आपने भक्ति क्या उदाहरण दिया है। और और भारतवर्ष में नर नारायण की उपासना हमारे नारद जी महाराज करते हैं। वो कहते हैं कि महाराज संसार में भोगी आदमी का भोगी आदमी की पहचान क्या है कि वो इस लोक के परलोक के भोग पदार्थों का ही हरदम चिंतन करता रहता है और इस गंदे शरीर को मैं मान करके मेरा मान करके जो कितना ही बढ़िया काम कर दो महाराज वो उसके लिए श्रम एव केवलम वो केवल उसका श्रम ही होता है। भारतवर्ष का नाम आते ही सुखदेव जी कहने लगे अरे भारतवर्ष में कितनी बढ़िया बढ़िया नदियां हैं कैसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे पर्वत हैं इस भारतवर्ष में बहुत ही बड़ा भारी किसी का सुकृत होता है तो वो जन्म लेता है। देवता भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज भारतवर्ष में जन्म लेने वाले पुरुष बड़े श्रेष्ठ हैं। प्रसन्न एषाम स्विदुत स्वयं हरि भगवान इनके ऊपर कितने प्रसन्न हो गए देखो मनुष्यों पर इनको भारतवर्ष जैसा देश मिला। क्यों जी कि भारतवर्ष में सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां जाओ वहां भगवान की कथाएं मिलती है भगवान का मंदिर मिलता है भगवान के संत पुरुष मिलते हैं। यदि भगवान की कथा न हो संत महात्मा जहां न हो और जहां बड़े बड़े कथा कीर्तन आदि के उत्सव न हो तो वही देवलोक में भी रहने में कोई फायदा नहीं भगो यहां से। परंतु आश्चर्य इस बात का होता है मानव शरीर प्राप्त करके मनुष्य खाने के पीने के और भोगों के चक्र में फंस करके भगवान को भूलता है। न यतेरन वे मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करते न वही यतेरन न पुनर्भवायते वो अपुनर्भवाय माने मोक्षाय न यतेरन वो प्रयत्न ही नहीं करते ये बड़े दुख की बात है। इस प्रकार से जम्बू द्वीप के 9 विभाग हो गए। अब प्लक्षत द्वीप है वहां प्लक्षत द्वीप में सूर्य की उपासना होती है। जम्बू द्वीप के आगे खारा समुद्र फिर उसके बाद प्लक्षत द्वीप आता है वहां सूर्य की उपासना होती है। फिर उसके बाद शालमल द्वीप आता है जिसके चारों तरफ जो है प्लक्ष के चारों तरफ इक्षुरस है और शालमल द्वीप है उसके चारों तरफ सुराका सागर है। शालमल द्वीप में हमारे गरुड़ जी महाराज जाकर वहां पर बैठते हैं। शालमल क्या किसको बोलते हैं ये खेजड़ी को बोलते हैं बहुत बड़ी एक खेजड़ी है। उस खेजड़ी के ऊपर जाकर हमारे गरुड़ जी महाराज वहां पर बैठते हैं। जब भगवान याद करते हैं तो बैकुंठ चले जाते हैं और फिर नहीं तो यहां आके बैठ जाते हैं। तो शालमली द्वीप क्या है भगवान का मोटर गैरेज है। मोटर गैरेज वह आकर के गरुड़ जी बैठते हैं वहां चंद्रमा की उपासना होती है और उस सुरा सागर के बाद फिर कुशद द्वीप आता है जिसके चारों तरफ घी का सागर है। उस कुशद द्वीप में अग्नि की उपासना होती है अग्नि का घी का संबंध है। फिर उसके बाद क्रौंचक द्वीप आता है जिसके चारों तरफ क्षीर सागर है। क्रौंचक द्वीप में जल की उपासना होती है दूध का जल का संबंध है। और उसके बाद फिर शाकत द्वीप आता है जहां दही का दधि मंडोत माने मट्ठे का सागर है वहां वायु की उपासना होती है। उसके बाद पुष्कर द्वीप है जहां ब्रह्मा की उपासना होती है। फिर जहां ये जम्मू द्वीप से लेकर के और ये अंतिम पुष्कर द्वीप तक जो पृथ्वी का इनका क्षेत्र है उसके बाद लोकालोक पर्वत आता है बहुत ऊंचा लोकालोक पर्वत। उस लोकालोक पर्वत पर उसका नाम लोकालोक क्यों है कि सूर्य भगवान जब सुमेरु पर्वत पर चक्कर लगाते हैं उस समय में लोकालोक पर्वत की छाया पड़ती है। तो वो ये लोकालोक पर्वत यूं है और सूर्य जब बीच में सुमेरु पर्वत के यूं चलते तो यहां तो प्रकाश हो गया लेकिन इधर ये सुमेरु पर्वत इधर लोकालोक पर्वत इसकी छाया पड़ गई ना तो यहां इधर प्रकाश नहीं रहा। फिर सूर्य यूं आते हैं तो फिर इधर अंधेरा होने लगता है यूं इसलिए अपने 24 घंटे का जो समय है ना, वो सब देशों में देखो सूर्य है ना, इस समय जैसे हमारे 1:34 हुआ है, ये समय रात्रि में कहीं 1:34 हो रहा है, ये अभी सूर्य के जितने क्षेत्र है घूमता है सब जगह सब समय होता है वहां, सब समय। उस लोकालोक पर्वत के ऊपर भगवान का एक स्थान है जहां पर बैठे बैठे भगवान सारी सृष्टि का संचालन करते हैं। लोकालोक पर्वत के बाहर 4 हाथी हैं बड़े बड़े, क्योंकि लोकालोक पर्वत इतने ऊंचे हैं कि इनको कोई जो है आधार चाहिए। देखो आप अपने किसी बहुत बड़ी भीत को देख लो, बड़ी सारी भीत कर लो, लेकिन उसमें टग नहीं लगाओगे, सहारा नहीं लगाओगे ना, तो आंधी में एक और में वो भीत जो है झोल खा करके गिर जाएगी। ऐसी लोकालोक पर्वत बहुत ऊंचा है, ये सुमेरु पर्वत के बराबर ऊंचा है, तो कहीं वो गिर न जाए तो चारों तरफ 4 हाथी है, वे 4 हाथी है उनको सबको अवस्थित रखते हैं। ये लोकालोक पर्वत 50 करोड़ योजन में से चौथाया हिस्सा स्वयं ने रोक लिया। 50 का चौथाया होता है 12.5, 12.5, 12.5, 25, फिर 12.5, 37.5 और 12.5, 50। 12.5, 12.5 का 4 विभाग किया तो एक भाग में केवल लोकालोक पर्वत रहता है, और वो जो हाथी है उनके नाम ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन और अपराजित, ये उनके नाम है। और अब जो है अंतरिक्ष में जाते हैं तो बीच में एक सूर्य का स्थान आता अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष माने उधर तो आकाश और इधर पृथ्वी, इनका बीच का क्षेत्र होता है वो अंतरिक्ष होता है, वहां सूर्य रहते हैं। अब सूर्य भगवान की किरणें भी अपने ढंग से चला करती है भाई, ये सब राशियों को देख देख करके चलती है। जब ये मेष और मिथुन तुला राशि पर रहते हैं सूर्य भगवान, तब दिन और रात समान होते हैं, दिन और रात बिल्कुल समान होते हैं। देखो 23 मार्च का और 23 सितंबर का, अब 23 सितंबर आएगा ना, उस दिन सूर्य या जो है सूर्य और नहीं दिन और रात बिल्कुल बराबर रहेंगे, बिल्कुल बराबर। 23 मार्च को बराबर रहता है और 23 सितंबर को रहता है। 23 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 23 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। इस प्रकार से ये राशियों पर सूर्य का परिभ्रमण होता है, दिन और रात में फर्क आता है। और ये जो सूर्य का जो रथ है वो देखो, वो जो है बहुत लंबा चौड़ा बताते हैं। सूर्य का मार्ग कितना है कि 9,51,00,000 योजन है मार्ग इसका चलने का। तो इस 9,51,00,000 योजन के अंदर वो इंद्रपुरी से रवाना होकर दक्षिण में देवधानीपुरी तक जाता है, फिर संयमनीपुरी में से जाकर के और फिर निम्लोचनीपुरी में जाता है, फिर आकर के उत्तर की तरफ विभावरीपुरी तक आ जाते हैं। इतना ये सूर्य का एक चक्कर लगता है। और दूसरी बात ये बताते हैं कि एक पुरी से दूसरी पुरी तक जाने में उनको 15 घड़ी से थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, और 2.25 करोड़ योजन और 12.5 2 करोड़ और फिर 12.5 लाख योजन तक एक की दूरी होती है, उस दूरी को भी पार करते हैं। ऐसे वे सूर्य भगवान चलते हैं। और सूर्य भगवान का जो रथ नीड है वो 36 लाख योजन बताया गया है, माने रथ का जो यू जुआ भाग उसमें भी देखो अरुण सारथी है, वो क्या करता है, घोड़े तो यूं जा रहे हैं, घोड़े यूं जा रहे हैं, तो सारथी को तो घोड़े के मुंह की तरफ चलना चाहिए ना, और सारथी क्या है उसके लगाम अपने हाथ में और पीछे वो सूर्य भगवान को पीठ कैसे करे, तो वो सूर्य भगवान की तरफ मुंह किया हुआ बैठा रहता है, सूर्य भगवान की तरफ मुंह और घोड़े यूं चलते हैं। ऐसे वो जो है उनका ये चलना होता है। और बताया है कि भाई सूर्य है, सूर्य से ऊपर आगे जाए तो चंद्रमा का स्थान आता है, सूर्य से आगे चंद्रमा, ऊपर चंद्रमा की गति थोड़ी तेज मानी गई है। अब ये देखना है कि चंद्रमा तेज कैसे चलता है। अब इसको यूं देखिए, आप अपनी अंगुली है ना, यूं चल, चार ही अंगुली है, चार अंगुली। अब इस जो ये जो तर्जनी है, तर्जनी ये मध्यमा तक है, तो इसके बीच में देखो यहाँ कितना स्पेस है, कितनी दूरी है, और इसके नीचे देखो ये यहाँ है, तो इस पर्वत से इस पर्वत तक कितनी कम दूरी है। तो चंद्रमा तो है यहाँ और सूर्य है यहाँ, तो सूर्य को यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगेगा, चंद्रमा को यहाँ से आने में समय नहीं लगेगा, दूरी यही कहलाएगी, माने स्थान तो यही कहलाएगा कि तर्जनी से हमको जो है मध्यमा तक जाना है, मध्यमा से अनामिका तक जाना है, और अनामिका से कनिष्ठा तक जाना है। पर नीचे से दूरियां कितनी कम है, ऊपर से तो सूर्य यूं चलता है, नीचे से चंद्रमा यूं चलता है। ऐसे इनकी सब ग्रहों की अपनी अलग अलग जगह होती है, और फिर उसके बाद 28 नक्षत्र आते हैं, फिर बुध आता है, सोम आते हैं, इन सब के चलते चलते शनिश्चर आता है, और ये सब नक्षत्र राशि मिलकर के गिलहरी के समान आकाश में दिखते हैं। कभी कभी देखो आप, सबको दिखाई देगा साफ आकाश हो, यू यू नक्षत्रों का यू सब पुंज दिखता है। सब नक्षत्रों का अपना अपना स्थान इसी प्रकार का होता है। तो ये तो हमने आपको ये बताया। अब उस अंतरिक्ष के अंदर ही स्वर भानु रहता है राहु, तो वो राहु भी नक्षत्र के समान चलता है, क्योंकि वो अमृत को जितना पी लिया था वो उसका शिरोभाग ज्यों का त्यों रहता है, वो जो है मरता नहीं है, और वो सब देवताओं के साथ, सूर्य चंद्रमा के साथ, पृथ्वी के साथ घूमता रहता है। वो सबसे बड़ा है, सूर्य का प्रतिबिंब है वो, तो देखो जो है चंद्रमा का प्रतिबिंब 12,000 बड़ा है, 12,000 योजन चंद्रमा, और राहु है वो 13,000 है, तभी तो उसको ग्रस्ता है। योजना युतम आचक्षते, और 10,000 है हमारा सूर्य, सूर्य जो है वो 10,000 योजन गोलाई में ही हो, चंद्रमा 12,000 और ये हमारे राहु है ये 13,000 है, तब उनको ग्रस्त है। अब हम आपको बताते हैं कि सिद्ध है, चारण है, विद्याधर है, ये क्या, ये भी आकाश जातियां हैं, और फिर उसके बाद यक्ष, राक्षस, किन्नर, पिशाच, इनके इनका स्थान आता है। फिर उसके बाद ये पृथ्वी आती है, और पृथ्वी के अंदर फिर ये अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये बिल स्वर्ग होते हैं पृथ्वी के अंदर खंडों में, पृथ्वी के खंडों में ही स्वर्ग है, और पृथ्वी के खंडों में ही नरक है। तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सात जो है पृथ्वी के अंदर बिल स्वर्ग कहलाते हैं। इसके अंदर इतने सुख सामग्री है जिसका कोई देवताओं को भी भाई जो है इतनी सुख सामग्री नहीं मिलती। यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, ठंडे रहते हैं ये, और प्रकाश यहाँ प्रकाश मणियों के द्वारा होता है, मणियों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और उद्यानानि से और बाग बगीचे ऐसे बढ़िया हैं, सब ऋतुओं में सब फल होने वाले होते हैं। मन इंद्रियानंदी भी, मन और इंद्रियों को आनंदित करने वाले होते हैं। जैसे अतल है, अतल के अंदर मयासुर रहता है, वितल के अंदर भगवान शंकर रहते हैं, सुतल के अंदर बलि राजा रहते हैं। देखो भगवान सुतल में ज्यादा रहते हैं, विष्णु भगवान बलि के पास में बैठते हैं, बलि के पास में पहरा देते हैं, ये सब हम तुमको आगे बता देंगे। महाराज बलि विचार करते हैं कि भाई देखो ये इंद्र बड़ा स्वार्थी है, अरे भगवान का भजन करो, तो भगवान का भजन तो करते नहीं, और ये देवता लोग केवल हम लोगों से लड़ाई झगड़ा करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। बृहस्पति जैसा इनको गुरु मिल गया। नूनम बतायम भगवान अर्थे सुन निष्णातो योसौ इंद्र है यसे सचिव मंत्राय वृत है एकांतितो बृहस्पति। बृहस्पति इनका एकमात्र जो है सलाह देने वाले। तम अतिहाय उनकी तो बात मानते नहीं और स्वयं उपेन्द्रेण आत्मान अयाचत आत्मनश्च आशीष है। वो जो है वामन भगवान के पास जाकर इसी स्वर की याचना करने लगे और उसकी दास भाव को तो छोड़ दिया और ये बस एक मन्वंतर तक मिलने वाला राज्य उस राज्य के लिए इतना काम करते हैं। ऐसे उसके मन में त्याग की भावना आती है। वो सोचता है मेरे पर तो भगवान ने बड़ी कृपा की। क्यों? क्योंकि हम तो इस राज्य के अंदर बड़े भारी उलझ गए थे। महान अनुभावस्य, महान जिनका अनुभव है प्रभाव है, ऐसे उन्हें क्या किया कि मृजित कषाय हम लोगों के पाप दूर कर दिए। तभी तो देखो उनकी कृपा से हम लोग यहाँ बैठे बैठे उनकी कथा सुनते हैं। ऐसा उनके मन में बड़ा भाव आता। ऐसे महाराज बलि जैसे जैसे सुतल में रहने वाले लोग हैं सबके मन में भक्ति का उदय होता है। तलातल में दानवेंद्र रहते हैं, महातल के अंदर सर्प रहते हैं, रसातल में दैत्य दानव रहते हैं, पाताल के अंदर जो है वासुकी आदि नाग रहते हैं और पाताल के 30,000 योजन नीचे भगवान शंकरसन का निवास है। कहते हैं वो शंकरसन भगवान यूं विशाल शरीर वाले वो जब यूं मस्ती के साथ यूं लेटे रहते हैं उनकी भुजाओं का देखो। शंकरसन भगवान गौरवर्ण वाले हैं और हमारे नारायण भगवान श्याम वर्ण वाले हैं। बड़ी विचित्र बात है। तमो मूर्ति तो गौरी है। शंकर जी के लिए आपने सुना ना कि कर्पूर गौरम करुणावतारम और हमारे विष्णु भगवान कैसे हैं कि वो घनश्याम है श्याम है। वो पूछा कि ये ऐसा भेद क्यों हुआ। भगवान विष्णु तो सत्वगुण की प्रधानता से बनते हैं, अवतार लेते हैं तो उनका सत्वगुण रहता है मुख्य। तो सत्वगुण मुख्य होने से भगवान विष्णु तो गोरे होने चाहिए और हमारे भगवान शंकर हैं वो तमोगुण प्रधान है। तो तमोगुण तो भाई काला होता है तो कृष्णवर्ण वाले होने चाहिए। पर ऐसा भेद क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ कि कृष्ण और शिव दोनों में बहुत प्रेम है। तो बहुत गोरे थे हमारे भगवान विष्णु, उनका ध्यान करने लगे शंकर जी। तो वो गोरे का ध्यान करते 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 विष्णु का गोरापन शंकर जी में आ गया। देखो आपके लिए जो आदर्श पुरुष होगा ना, आप उसका ध्यान करोगे तो उसका स्वरूप आप में उतर ही आएगा। अनजाने में वो कोई आदमी कह सकता है, अनजाने में अनजान पने में कह सकता है कि ये अमुक के अमुक के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा कह सकता है। देखो विचित्र बातें हैं। पुत्र होता है उसको उसको माँ बाप की शकल कैसे उसमें उतरती है। माता की शकल पिता की शकल क्यों उतरती है कि श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री होती है, माताएं होती है, पतिव्रताएं माताएं अपने पति में बहुत अनुराग रखती है, उन पति का चिंतन करती है। चिंतन करने के कारण से उस संतान के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, उनका चेहरा उनका चाल उनकी बोल डोलिया आती है। ऐसे ही कोई शिष्य होता है और जिस महापुरुष के पास में वो साधना करता है उस महापुरुष का ध्यान करते से उसको अपने चित्त में बसाने से उसके अंदर क्रिया कलाप लहजा बोलने की चाली सब उसमें आ जाती है। अनजान आदमी कह सकता है कि ये व्यक्ति अमुक महात्मा के पास रहा हुआ है, ये अपना आप बोल देते हैं। एक परिवार था, पति भी गोरे थे और पत्नी भी गोरी थी और दोनों के एक लड़का हुआ बिल्कुल काला कलुटार भद्दी आकृति का, न तो माँ से मिले न पिता से मिले, बहुत भद्दी आकृति। तो वो पति पत्नी विचार करने लगे कि ये इतना कुरूप इतना भद्दा ये हमारे लड़का कैसे हुआ। तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने भी बड़ा अचंभा किया कि भाई देखो आपका शरीर भी गोरा है, इनका शरीर भी गोरा है, लड़का ऐसा और वो काला भी हो, एक एक सुनहरा काला होता है श्याम वर्ण का जो प्री भी लगता है, ये तो एकदम एकदम हापसी जैसा, ये अपनी जाति का ही सही नहीं लगता है, बात क्या है। डॉक्टर ने भी खूब दिमाग लगाया, उसके समझ में नहीं आया। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि जी मैं आपके घर आना चाहता हूं, क्या आइए। तो वो डॉक्टर घर आए और कहा कि ये जिस समय में गर्भावस्था में थी उस समय में कौन से कमरे में रहती थी। तो बताया गर्भावस्था में इस कमरे में थी। उस कमरे को देखा, उस कमरे के अंदर एक चित्र दिखाई दिया बड़ा सा, एक हफ्सी का चित्र था, कौड़ा कलूटा हफ्सी उसका चित्र था। वो कहे तो आप इसको देखा करती थी, ये तुम बहुत देखती थी, मैं इसको देख देख के सोचती थी कि देखो ये लोग कैसे काले होते हैं, अफ्रीका का है ये, कैसे हफ्सी कैसा मुंह होता है, कैसे तो इसके साथ तुम्हारे बेटे का देखो चेहरा मिलता है कि नहीं, कि तो मिलता है, ये इसी का रंग मिल गया। चित्र देखा करती थी और उसके विषय में विचार करती थी, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ा। आजकल लोग घरों के अंदर सजावट में जाते हैं, वहां देखते हैं बाजार से एक रुई का कैसा एक कुत्ता ला के रख देंगे वो कुत्ता, और कभी कोई और ला के रख देंगे, कभी सजावट में कोई सिंह ला करके रख देंगे, पशु लाकर रखेंगे। उनको बोलते हैं आपके घर में एक भी भगवान का चित्र नहीं, भगवान भगवान नहीं है हमारे, भगवान है देखो देखो हमारे मंदिर है, हमारी पत्नी उपासना करती है। अरे पत्नी तो दो घंटे करती है, आपके मूल कमरे के अंदर आपने कुत्तों का लगाया, सीनरियों का लगाया, हाथियों का लगाया, कुत्तों का लगाया, हिरणों का लगाया, ये चित्र लगाए कुछ लाके रख, आप भगवान का भी तो चित्र रख सकते थे। भगवान का चित्र नहीं लगाते, भगवान का चित्र रखेंगे तो नहीं ये कोई ठीक है, हाँ बात तो ठीक है और भाई मानेंगे नहीं वो बात। अरे भगवान का चित्र रखोगे, देखो घरों के अंदर ऐसा चित्र होना चाहिए, गर्भावस्था में कैसा हो, यशोदोत्संग भगवान कृष्ण, यशोदोत्संग, यशोदोत्संग माने यशोदा जी की गोद में हो भगवान, छोटे भगवान, भगवान हो यशोदा जी की गोद में प्यार करते हो, वो बच्चा आपके होगा तो माँ के साथ बच्चे का बहुत प्यार होगा, वो माँ से बहुत प्यार करेगा, क्योंकि उस माँ के आंखों के अंदर वो यशोदा जी के गोद में कृष्ण को देखा, उसके मन में मातृता उमड़ती है, तो उसका प्रभाव बालक पर पड़ेगा। गर्भ में पड़े हुए बालक पर ये बाहर के संस्कार बहुत जल्दी कैच होते हैं वहां, इसलिए अच्छे चित्र रखो। ये उधर लाकर कुकरिया ला के रख दिया, वो क्या करते हैं उस कुकरिया को जब उसको यू दबाते हैं तो उसमें जो पू पू आवाज आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये कोई विनोद के साधन है, ये कोई श्रृंगार के साधन है, ऐसे बस ला के रख दिया, जगह रुकती फालतू। ऐसे छोटे छोटे खड़ होते हैं वहां पर, कई चीजें यू जताते हैं, अरे वहां जताओ तो भाई पुस्तक जताओ, गीता प्रेस की कोई पुस्तक हो, अच्छे अच्छे महात्माओं की पुस्तक हो, गीता हो, रामायण हो, कभी आप आकर के बैठे वहां अच्छी पुस्तक होगी, मन में कुछ पढ़े, आपने गीता प्रेस की कोई पुस्तक पढ़ी, एक बात भी दी आपके लग गई तो कितना लाभ होगा आपको। छोटे छोटे बच्चे है ना, इन बच्चों को क्या करना है, छोटे छोटे बच्चे तीसरी चौथी में पढ़ने वाले बच्चे, इनको क्या करना चाहिए, गीता प्रेस की रंगीन चित्रावलियों की पुस्तकें आती है, कन्हैया है, मोहन है, ऐसे और है, कभी कम जो है माता जी का आता है, ऐसे कई पुस्तकें आती है, वो चुपचाप वहां रख देनी चाहिए दो चार जगह, जहां बच्चे आकर के विशेष बैठते हैं देखते हैं, बच्चों कहो मत कि ये पढ़ो, ऐसे ही रख दो, बच्चे के कौतूहल होता है, वो चित्र देखता है, ये चित्र है, वो चित्र देखेगा और फिर नीचे लिखा हुआ बांचेगा, धीरे धीरे बांचेगा, उसकी तुतलाती बोली में और उसके प्यार भरे नजरों में बहुत अच्छा संस्कार पड़ेगा। पुराने जमाने में बूढ़ी बूढ़ी माताएं ये क्या करती, घर में बच्चे को बैठा दी, बेटा ये देख ले रामायण सुना दे, बेटा मेरे को तो मैं तो पढ़ी भी नहीं हूं और मेरे से दिखता भी नहीं है और तू सुना दे, वो छोटा बच्चा बोलता था। तो देखो, एक तो छोटा बच्चा बोलता है, वो बच्चा कोई राग द्वेष तो है नहीं, और वो अपने जैसे समझ में आए वो बोले, तो एक तो उसको बोलने का अभ्यास होगा, और दूसरे में उसको लिखी हुई बात थोड़ी थोड़ी समझ में भी आएगी, और तीसरी बात है उसमें बहुत अच्छे संस्कार पड़ेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि दक्षिण में जो शिवाजी हुए, इतने बड़े योद्धा हुए, वो योद्धा क्यों हुए, कैसे हुए? उनकी दादी माँ थी, दादी माँ उनको कहती कि शिवा मुझे महाभारत बहुत अच्छा लगता है, तो महाभारत सुना, तो शिवाजी महाभारत सुनाते थे, बच्चे थे शिवाजी, पढ़ते थे तब, तो उनके मन में पढ़ते पढ़ते भाव आया कि देखो अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सबके मन में ये भावना आती है, और मेरा ये देश ये गुलाम हुआ हुआ है, हम भी इसको क्यों नहीं आजाद कराने का विचार करें। ऐसे उनके मन में भावना आई, उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया, सायंकाल खेलते थे, खेल खेल में वो ऐसा करते कि देखो ये तुम्हारा किला है, ये हम तुमसे लड़ाई करते, तुम हमको जीतो, हम तुमको जीतते हैं, ऐसे कभी हारते कभी जीतते, कभी हारते कभी जीतते, ऐसे करते कर टोलियां बनाई, और टोलियां बना बना करके फिर महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता कायम की। वो माँ उसको महाराष्ट्र का जो है सिंह बोलते थे, वहां मुसलमान लोग अपने शासन के समय में कहते ये महाराष्ट्र का सिंह है, ये शिवाजी का सिंह है। उसका प्रभाव यहीं से ही पड़ा, महाभारत की पुस्तक से ही पड़ा, राष्ट्र प्रेम जागृत हुआ उनके, और फिर देखो संकल्प शक्ति में जितनी प्रबलता होती वो अपने आप साधन जुड़ जाते हैं। अस्तु, तो हमारे संकर्षण भगवान पाताल के नीचे रहते हैं, वहां पर नाग पत्नियां आती है, उनका श्रृंगार करती है। हाँ बता ये रहे थे कि भगवान विष्णु है वो श्याम क्यों हो गए, कि वो शंकर जी का चिंतन करते थे, तो शंकर जी की काली माँ भगवान विष्णु में आ गई, और विष्णु का गोरापन भगवान शंकर में चला गया। तो कर्पूर गौरव करुणावतारम, कर्पूर गौरव, वो कितने गोरे हैं वो भगवान शंकर। लोग कहते हैं भगवान शंकर में और विष्णु में देखो भेद देखते हैं, कोई भेद नहीं है। तो हमारे संकर्षण भगवान बिल्कुल गौर वर्ण वाले हैं, और जब नाग पत्नियां जाकर उनके चरणों में चंदन लगाती है, उस समय उनको भय लगता है, उनको करे भाई कहीं क्रोध न करे। तब उनको देखती रहती, और जब वे भगवान अरुण करुणावलोकन नयन वदान अरविंद, जब भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती और कृपा पूर्ण उनका चेहरा देखती, तब सब रिडम किल विलोकयंती, तब उनको लज्जा भी आती, अंदर प्रेम भी उमड़ता, और प्रेम उमड़ करके और फिर जो है वो देखा करती थी। ऐसे भगवान का ध्यान हुआ, ऐसे वो भगवान का ध्यान करती थी। उन संकर्षण भगवान की महिमा हमारे ब्रह्मा जी बोलते हैं, हमारे नारद जी ब्रह्मा जी की सभा में बोलते हैं, अरे संकर्षण जी का प्रभाव देखो, कि उन्होंने ऐसा रूप बनाया कि उनके अंदर कृपा बरसती थी, कृपा, और ऐसा उनका पराक्रम कि उस पराक्रम का थोड़ा सा अंश हमारे सिंह ने लिया, तो सिंह की आवाज कैसी गंभीर होती है, वो गंभीरता कहां से आई, वो गंभीरता हमारे संकर्षण भगवान से आई। वे संकर्षण भगवान मूर्ध्न पिता मणुवत सहस्र मूर्धन, अपने हजारों सिरों के ऊपर ये ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई एक छोटा सा मिट्टी का कण पड़ा हुआ हो। ये विचित्र विचित्र स्थान है, विचित्र विचित्र लोक है, जहाँ पर लोगों को जाना पड़ता है, वो जो है इसलिए है कि लोगों के कर्म अलग अलग है, लोगों के कर्म अलग होने से उनको अलग अलग स्थान पर बैठाया जाता है। इसके अलावा भी एक नरक नाम का भी स्थान है। तो कहा कि नरक क्या होता है हमारा, नरक क्यों मिलता है, कि देखो नरक मिलता है निषिद्ध कर्म को करने से, विहित कर्म का पालन नहीं करोगे तो तो नरक नहीं मिलेगा। माने जो काम करना चाहिए वो आप काम करो नहीं करोगे नरक नहीं मिलेगा, परंतु जो नहीं करना चाहिए वो आप करोगे तो नरक मिलेगा परीक्षित। तो महाराज ऐसे निषिद्ध कर्म करने से कौन कौन से नरक मिलते हैं और नरक कहाँ रहते हैं कि नरक है हमारे यही त्रिलोकी में ही नरक है, अंतरालय त्रिजगत्या यही नरक है और वो भी पृथ्वी के अंदर है और पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में है और पृथ्वी के अंदर खड्डे के अंदर वो नरक है, समुद्र से ऊपर और पृथ्वी के अंदर खड्डों में नरक है। अब बताते हैं कि नरक कितने होते हैं कि 28 नरक होते हैं। वे 28 नरक कौन कौन से होते हैं अब बताते हैं। तामिश्र, अंधत्रामिश्र, रोरव, महारोरव, कुंभिपा, कालसूत्र, असिपत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्त सूरमी, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पुयोध, प्राणरोध और विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, अयपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुखी। 28 नरक है। नरक तो हजारों है पर ये 28 खास नरक है कि महाराज ये नरक क्यों मिलते हैं। देखो अब थोड़ा सावधानी से सुनना भाई, सावधानी से सुनना कि जो व्यक्ति दूसरे का धन हड़पता है, दूसरे के बच्चों का हरण करता है, स्त्री का हरण करता है, वो अंत में जाकर तामिश्र नरक के अंदर गिरता है। वहां उसको भूखा प्यासा रखा जाता है और बार बार उसको प्रताड़ना सुननी पड़ती है और यमराज जी के जो सेवक लोग होते हैं वो वहां उसको कोड़े से पीटते भी हैं। और अंध तामिश्र के अंदर बताया है कि इन चीजों का जो उपभोग करता है, दूसरे से ठग करके इनका उपभोग करता है, वो अंध तामिश्र में जाता है, वहां उसको वैसे ही कष्ट दिया जाता है जैसे ईख है माने गन्ना है उसको पेला जाए उसमें, वनस्पति वृक्षमान मूलया जैसे वृक्ष को काटा जाता है कुल्हाड़ी से काटते हैं ऐसे अंध तामिश्र में उसको काटा जाता है। मरते नहीं है ये नारकीय प्राणी यातनाओं से मरते नहीं है, उनका शरीर ही ऐसा ही होता है वो मरते नहीं है। मर जाए तो भाई नर की यातना ही खत्म हो जाए पर वो मरते भी नहीं है और खूब भुगतते रहते हैं। जो आदमी शरीर को मैं और मेरा मानता है, केवल अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही लगा हुआ है और फिर दूसरे के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करता, इसके पीछे वो रोरव नरक में जाता है जहाँ रूरू नाम के कीड़े होते हैं, वो उसको ये चैट चैट के वो खाते हैं, दांत अंदर गुड़ा गुड़ा गाड़ गाड़ करके और उसके इस मांस को खींचते रहते हैं। जो व्यक्ति मांस खाने वाले होते हैं वो कुंभिपाक नरक में जाते हैं, वहां वे जो है उनको काट काट करके और एक जो है तेल होता है तेल कड़ा तेल बहुत गर्म किया हुआ तेल उसमें उनको काट काट करके सिजोया जाता है जैसे पकोड़े बनाते हैं ऐसे उनको बनाया जाता है। मरते नहीं है वो, मरते नहीं है और पीड़ित होते रहते हैं शरीर को काटते हैं। जो माँ बाप के साथ द्वेष रखता है, जो ब्राह्मण के साथ द्वेष रखता है और जो वेद की निंदा करता है वो कालसूत्र नाम के नरक में जाता है और वहां उसको भूखा प्यासा रखते हैं। ताम्रमय तप्त खले ऊपर अधस्ताद अग्नियर का भ्याम अति तप्य मानो अभिनिवेशित है। ऊपर से तो अग्नि जो है सूर्य और अंदर से अग्नि, अग्नि और सूर्य दोनों की गर्मी से बहुत तपता है वहां और तांबे का एक स्थान है उसके ऊपर उसको लोटपोट करके मारते पीटते हैं। कब तक पशु रोमाणी यावद वर्ष सहस्राणी, एक पशु के जितने बाल होते हैं एक बाल को हजार से गुणा करो उतने बरस तक उसको ऐसा कष्ट सहन करना पड़ता है। इसलिए भाई माँ बाप का आशीर्वाद लेना हो माँ कभी कुपित न हो जाए, कभी भी हमारे व्यवहार से यदि माँ के आंख में आंसू आ गया कि बेटा मैंने तुझे ऐसा नहीं समझा था, भाई उससे बढ़कर कोई दुर्दिन नहीं है, माँ का आशीर्वाद ले। और कहते हैं कि जो अपने कुल की मर्यादा का त्याग करते हैं, पाखंड करते हैं, वो असीपत्र वन नाम के नरक में जाते हैं, जहां वो तलवारें लटकती रहती हैं, उनके बीच में वो कटता रहता है, उसको मार मार करके उसके बीच में से दौड़ाते हैं, जाओ अब तलवार, यूं भी तलवार, इधर भी तलवार, इधर भी तलवार, नीचे भी तलवार, ऐसे उसके तलवार ही तलवारों के बीच में जाना और पीछे से कोड़े मारना, दौड़ो दौड़ो, तो जगह जगह उसका शरीर कटता है। हा हा तो उसमें, अरे मैं मर गया, मुझे बचाओ, ऐसे वो बहुत बोलता रहता है, पर वहां कौन बचाने वाला है, बहुत कष्ट पाता है। जो राजा या राज कर्मचारी अदंड व्यक्ति को दंड देता है या ब्राह्मण को शारीरिक दंड देता है, वो शूकर मुख नाम के नरक में गिरता है, जहां उसको कोलू के अंदर जैसे गन्ने को पेला जाए ऐसे उसको पेला जाता है। और वो आर्त स्वरेण स्वनयन, वो इतनी चीख मारता है कोई उसकी बात वहां सुनने वाला नहीं है। ध्यान देना हो, लोग अपने घरों में मक्खी मच्छर मारते हैं, ये कीड़ा है, कीड़ा नाल को, ये कीड़े बहुत हो गए, मार दो इनको, जहर डाल दो, और एक वो फूंक फूंक करने वाली मशीन आती है जिसे मच्छर है मक्खी है सब मार दो, कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान ने जिन जीवों की जो वृत्ति बनाई है, उन बिचारे निरपराध प्राणियों को जो उनको मारता है, तो अंधकूप नाम के नरक में जाते हैं, वहां पर फिर उनसे भयंकर कीड़े उनको बुरी तरह से वहां पर खाते हैं। इसलिए इन कीड़ों को मारना नहीं चाहिए, बचना चाहिए इनसे। मच्छर से जितना बचा है बचो, मक्खियों से बचो, कीड़े मकोड़ों से बचो, बचने का उपाय कीजिए। या ये भग जाए ऐसा उपाय कर सकते हैं, ये आवे ही नहीं, ऐसी चीज रह गई जिसकी दुर्गंध से ये आवे ही नहीं, ऐसा कर सकते, वो मारना नहीं चाहिए। जो आदमी अपने घर के अंदर कोई चीज वस्तु है उसका वो ठीक विभाग न करके अकेला ही खाना चाहता है, वो कृमि भोजन नाम के नरक में जाता है, और वहां उसको कई कीड़े हैं वो बराबर उसको खाते रहते हैं, इसलिए कृमि भोजन नरक है ये। जो ब्राह्मण का धन चुरा लिया या किसी व्यक्ति का सोना चांदी आदि चुरा लिया, तो वो संदंश नाम के नरक में जाते हैं। संदंश बोलते हैं, अपने मारवाड़ी बोलते हैं संडासी, लोकी बनी हुई था संडासी, तो वो ऐसे संदंश नरक में जाते हैं, वहां यमराज जी के दूत उसकी चमड़ी को संडासी से पकड़ करके ये उतारते हैं, ये उतार के रख दिया, ये उतार के रख दिया, ऐसे शरीर से चमड़ियां उतारते हैं, और फिर वो ही वापिस आकर के लग जाती है, फिर उतारते हैं, फिर लगते हैं, फिर उतारते हैं, फिर लगते रहते हैं। ऐसे ही भाई बताया है कि जो अगम्य स्त्री के साथ रहता है या अगम्य पुरुष के साथ जो स्त्री रहती है, वो आगे जाकर के ऐसे नरक में जाते हैं जहां तप्त सुरमी जो कहलाता है माने लोहे की स्त्री बनाई जाती है, खूब गरम गरम उसके साथ उस पुरुष को चेप दिया जाता है, बांध दिया जाता है और कोड़े पड़ते हैं। ऐसे ही जो स्त्री अगम्य पुरुष के पास रहती है, तो भाई उसको भी लोहे के पुरुष के साथ उसको बांध करके उसको कोड़े से पीटते रहते हैं। लोह मैया पुरुषम आलिंगयती स्त्री च पुरुष रूपया सूर्म्या, ऐसी आदत है। जो व्यक्ति पाखंड करते हैं और धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं, जो राजपुरुष होकर के भी पाखंड फैलाते हैं, धर्म की मर्यादा का उच्छेदन करते हैं, वे वैतरणी नाम की नदी में जाकर गिरते हैं। इसमें बहुत गंदी गंदी चीजें रहती है भाई, उन्हीं को, वो जो गंदी चीजें हैं उन्हीं के अंदर उसको डुबा डुबा करके रखते हैं। बहुत गंदी चीज, विष्ठा है, मूत्र है, मवाद है, खून है, केश है, नख है, बस उसमें जो वो ऊपर आता है क्यों उसको डुबोते हैं, क्यों उसको डुबोते हैं, और वही उसको खाना पड़ता है वहां। और जो लोग गधा पालते हैं और जो है कुत्ता पालते हैं, वे लोग आगे जाकर के ऐसे नरक में गिरते हैं कि जो है वो नरक का नाम है प्राणरोध नाम का नरक, प्राणरोध। यम पुरुषा इसुभीर विद्यंती, वहां क्या करते हैं उन लोगों को खड़ा कर देते हैं, खड़ा करके उसके बाण मारते हैं, तो बाण उनके शरीरों में से निकलता है, मरते नहीं है, बाण चलते रहते हैं। इसलिए भाई कुत्ता पालना वगैरह वर्जित है, गधा पालना वर्जित है। वैश्य से नाच्या, और जो व्यक्ति यज्ञ के नाम पर पशुओं की हिंसा करते हैं वह वैश्यस नाम के नरक में जाकर के गिरते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के घर में आग लगाते हैं और डाका डालते हैं, गांव वगैरह को लूटते हैं, वे व्यक्ति आगे जाकर के ऐसे नरक में गिरते हैं, वो उस नरक का नाम है, उस नरक का नाम बताते हैं कि सारमेयानंद। सारमेय बोलते हैं कुत्ते को, तो यमराज जी के 720 कुत्ते हैं एक साथ लपट करके उसको पकड़ करके और जो है छीलते रहते हैं, खाते रहते हैं। जो आदमी गवाही के अंदर झूठी बात बोलते हैं उन लोगों को बहुत ऊंचे पर्वत से नीचे गिराया जाता है और सिर की तरफ से गिराया जाता है ऊपर पर्वत से, उसको अविची मती नरक बोलते हैं। उसका सिर फूटता है, शरीर अलग हो गया, फिर वापस वो शरीर मिल गया, फिर उसको पहाड़ से गिरते हैं। ऐसे रात दिन यही काम धंधा रहता है उनका। जो व्यक्ति शराब पीता है, शराब पीने वाला होता है, उस व्यक्ति को आगे जाकर के ऐसे नरक में जाना पड़ता है जहां गरम गरम तपा हुआ लोहा उसको खूब गरम किया तो वो पानी पानी हो गया, वो उसके मुंह में डाला जाता है। जो व्यक्ति अपने से बड़े कुल में पैदा होने वाले लोगों का अपमान करता है कि क्या हो गया तुम ऊंचे कुल में हो गए तो क्या हो गया, हम कोई कम थोड़ा ही है, ऐसे करके उनका अपमान करता है। स्वयं अधम है, स्वयं तो है छोटा और दूसरों का बड़ों का करता है अपमान, तो वो क्षार करदम नाम के नरक में सिर की तरफ से पड़ता है, कादे में पैर की तरफ से नहीं सिर की तरफ से कादे के अंदर वो पड़ा रहता है। और जो व्यक्ति भाई जंगल के अंदर या गांव में बेचारे पशु पक्षी आदि बड़े स्वच्छंदता से रहने वाले, उनको जो मारते हैं वे शूलप्रोत नाम के नरक में जाते हैं, वहां यमराज जी उनको शूल में पिरो दिया है, शूल गड़ा दिया, अब बस पड़े रहो शूल के अंदर ही अटकते रहो, न तो प्राण निकलते हैं न वो शूल निकलता है, बस दुख पाते रहते हैं। जो व्यक्ति प्राणियों को बिना किसी कारण से दुखी करते रहते हैं, उद्विग्न करते रहते हैं, बार बार डराते रहते हैं, वे दंडसूप नाम के नरक में जाकर गिरते हैं। और भाई जो व्यक्ति अतिथियों को घर में आता देख करके जो है मुंह सुझा लेता है, और निदक्षु नहीं वो पापी ने चक्षुषा निरीक्षते, ऐसे घूर घूर करके देखता है, मन में सोचता है कहां से ये आफत आ गई, और उपगत मन्यु और अंदर क्रोध के अंदर वो जल रहा है, ऐसा व्यक्ति आगे जाकर पर्यावर्तन नाम के नरक में गिरता है, जहां उसको गीद के समान लंबी लंबी चोंच वाले पशु उसको पक्षी उसको खाते रहते हैं, बहुत दुख देते हैं। और जो व्यक्ति यहां पैसे का अभिमान करता है और अपने को खूब यो अहंकार में डुबाए रखता है, तिर्यक प्रेक्षण है, और यो तिरछा देखता है कौन है मेरे सामने, ऐसा मन में मानता है और अपने पैसे के नाश की हरदम चिंता करता रहता है, मेरा पैसा खर्च हो जाएगा, पैसा खर्च हो जाएगा, पैसा खर्च हो जाएगा। अरे उचित भी खर्च होता है तो भी वो परिशुष्यमान हृदय वदन है, उसका हृदय सूखता है, मुंह काला पड़ जाता है, अरे भाई इतना पैसा है तुम्हारे घर में खर्च हो गया, अच्छे काम में खर्च हो गया। महाराज जी कहते थे कि इतना पैसा क्या तुम इसके तूड़ी लगाओगे, क्या क्या काम आएगा पैसा, अच्छे काम में यदि तुम खर्च नहीं कर सकते तो पैसा क्या काम आएगा। परंतु भाई स्वभाव ऐसा बना लिया, सर्वतः अभी विशंकी, घर में बेटी आ जाए, अरे एक बेटी आ गई इसको देना पड़ेगा, बहन आ गई तो इसको देना पड़ेगा। ऐसे करके जो हर जगह शंका ही करता रहता है वह व्यक्ति आगे जाकर के सूचीमुख नाम के नरक में गिरता है, क्योंकि पैसे के अभिमान से अकड़ा ही चलता था। सूजन आ गई, सूजन वहां सूचीमुख में क्या करते हैं, उसके शरीर को यूं जो है चक्कू से इसे काटा और फिर सुई लगाई, फिर जो है काटा फिर सुई लगाई, फिर काटा फिर सुई लगाई, ऐसे उसको कष्ट भोगते रहना पड़ता है। ऐसे वित्तक ग्रहम पाप पुरुषम धमराज पुरुषा वायिका सर्वतो अंगेशु सूत्रे परिवयंती, सब जगह उसको यूं काट काट करके सीते रहते हैं। नरक बहुत है, लेकिन ये तो मैंने तुमको मामूली सी बात बताई है। ये नरक भी भगवान का स्थान है, भगवान सब जगह रहते हैं। जो व्यक्ति ध्यान से सुनना हो, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति इन नरकों की कथाओं को सुन लेता है वह व्यक्ति दोबारा नरक के अंदर कभी नहीं पड़ता। ऐसे अब देखो, तुमने हमसे जो बातें पूछी थी वो हमने बात बताई कि सकल जीव निकाय धाम है, ये सब जीव वहां सब जो है सब जगह रहते हैं। राजा तो भाई घबरा गए प्रश्न सुनकर के, राजा घबरा गए। घबराए हुए आदमी की क्या पहचान है, वो कैसे बोलता है, कैसे वो देखो वो दो बार बोलता है, तीन बार बोलता है, ऊट पटांग बोलता है। अरे चलो चलो चलो, वो आ गया, कौन आ गया याद ही नहीं आ रहा, वो आ गया, वो ऐसा हो गया, आग लगी, आग लगी, आग लग गई। वो तीन चार बार क्यों बोलते हो भाई, जो घबराहट होती है। तो भागवत है ना, ये भाव से निकलने वाला ग्रंथ है, भाव से। इसलिए इसमें केवल किसी कवि ने कृति लिख दी हो और किसी वक्ता ने बोल दिया हो ऐसा नहीं है, और किसी श्रोता ने सुन लिया हो इतना भी नहीं है कि कीड़ी पंसेरी ले गई हरे नमः। अब कीड़ी है ये कभी पंसेरी ले जाती है, कीड़ी है वो इतना सा गुड़ ले जा सकती, पंसेरी कैसे ले जाए। वक्ता ने कह दिया कि साहब कीड़ी पंसेरी ले गई हरे नमः, वाह वाह बहुत अच्छी कथा सुनाई साहब। अरे कैसे अच्छी सुनाई। आजकल अच्छी कथा का क्या नमूना है, वो नमूना है कि बोलते रहो, बस बोलते रहो, रुको मत। अब चाहे कैसे ही बोलो, बोले कुछ भी बोलाओ, रुकते नहीं है, धारा प्रवाह बोलते रहते हैं, बस वो अच्छी कथा हो गई। अरे भाई ज्ञान की कितनी बात, भागवत की कितनी बात, और कितनी बात, बस इधर बिचारे बोलते हैं, बस हम बोल देते हैं। ऐसी भागवत है नहीं, आई भागवत तो है, ये सजीव है, ये भावनाओं से कहा हुआ ग्रंथ है। भावनाओं से ही सुखदेव जी ने कहा है और भावनाओं से ही परीक्षित ने पूछा है। अब घबराते हुए परीक्षित जी पूछ रहे हैं, महाराज आपने निवृत्ति मार्ग तो पहले बता दिया था हमको, कहा दूसरे अध्याय में निवृत्ति मार्ग बताया, और क्रम योगोपलब्धेन कर्मणा यद असंस्कृति, और आपने क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति दोनों ही बता दी थी, क्रम मुक्ति भी बताई सद्यो मुक्ति भी बताई थी, ये हमने सुन लिया। तीसरे स्कंद में आपने प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषयो मुने, और सृष्टि कैसे प्रवृत्त होती है ऐसी बात आपने हमको बताई थी, और अधर्म लक्षणों से कैसे कैसे नरक मिलते ये आपने हमको अभी बताया। अबे तीसरे स्कंद के बाद तुम चौथा स्कंद बिल्कुल ही खा गए, और पांचवें स्कंद में बहुत बातें बताई थी तुम सब खा गए और नरकों तक आ गए। ऐसी क्या बात हुई भाई कि अधर्म लक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिता। अब ये वो और जो है अधर्म के द्वारा मिलने वाले नरकों के विषय में आपने बताया। अब वापिस आते, आपने देखो मनवंतर बताया था, चौथे स्कंद में मनवंतर की कथा बताई थी, यज्ञ भगवान ने कैसे देवताओं की सहायता की और क्या जीव का पुरुषार्थ होता है वो आपने हमको सुनाया था, और आपने प्रियव्रत और उत्तानपाद का वंश सुनाया। अजी परीक्षित जी, पहले प्रियव्रत का वंश सुनाया था कि पहले उत्तानपाद का वंश सुनाया? उत्तानपाद का वंश सुनाया हो, उत्तानपाद के ध्रुव हुए, ध्रुव के वत्सर हुए, फिर उसके वंश में अंग राजा हुए, अंग के बाद वेन हुए, वेन से पृथु हुए, पृथु से प्राचीन बर्री हुए, फिर उसमें जाकर के प्रचेता गण हुए, ये सारा का सारा उत्तानपाद का ही तो वंश था, यानी आपने प्रियव्रत का वंश सुनाया और उत्तानपाद का वंश सुनाया, ऊट पटाख बोल रहे हैं। और आपने द्वीपों के बारे में बताया, नौ द्वीप है, जम्मू ने नम्बू द्वीप है, ये सात द्वीप है, सात द्वीप है और एक एक द्वीप में नौ नौ वर्ष है, ये बताया। नदी समुद्र आदि सबका वर्णन किया, आकाश में सूर्य आदि का वर्णन किया और अभी अभी आपने नरक का वर्णन किया। जिनके पास भागवत है वो देख सकते हैं कि नरक के विषय में दो बार कहा, दो बार। घबरा गए बेचारे नरक की बात सुनकर के परीक्षित। क्यों घबराए वो? उनकी घबराहट हम लोगों के लिए थी हो कि ये बेचारा मनुष्य कहीं 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 भूल हो ही जाती है, कहीं गलती हो ही जाती है, इसका उद्धार कैसे हो। तो महाराज वो अंत में बोलते हैं कि अधुने महाभाग यथे व नरका नर है नागरो नानोग्रयातना नैयात तन्मे व्याख्या तो मर रसी। अब मनुष्य ने कर्म कर लिया सो कर लिया सो तो कर लिया, महाराज हो गई उससे गलती, ऐसा भी कोई उपाय है क्या कि जो हो गई उसको तो बराबर करो, हो गई उसको तो बराबर करो और उसको यातना न मिले, ऐसा कोई उपाय है क्या? सुखदेव जी महाराज ने कहा उपाय तो है, मरने से पहले पहले वो उपाय कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर भाई दंड तो मिलेगा। देखो परीक्षित है ये, सीधा ही ये बात कह सकता था कि मनुष्य को नरक न मिले, ऐसा कोई उपाय बताओ। उन्होंने इतनी बड़ी भूमिका क्यों बनाई कि ये घबरा गए थे, यहाँ ये जो है ज्यादा बुद्धि नहीं लगाए परीक्षित ने, ये बुद्धि लगाने की बात ही नहीं थी, ये तो हृदय की बात है। जो आदमी ज्यादा बुद्धि लगा करके प्रश्न पूछता है वो प्रश्न में स्वाभाविकता नहीं आती है। यहाँ परीक्षित तो करुणा से प्रश्न कर रहे, करुणा से, एक करुणित आदमी दया आ जाए वो क्या करे। कहीं कोई दुर्घटना हो गई, आदमी जाएगा अरे क्या हो गया, अरे आग लगी, लाओ लाओ मिट्टी लाओ, लाओ पानी लाओ, लाओ वो लाओ, ऐसे लाओ वो लाओ, अरे इससे आग भड़केगी क्या होगी, वो नहीं देखता, वो उसकी भावना है कि आग बंद हो, वो जैसे त्वरा में विचार करता है, वो ये नहीं सोचता कि क्या है, पास में घास लेट का भी यदि डब्बा पड़ा है उसको पता नहीं, वो देखा पानी का डब्बा उठाकर पानी का डब्बा डाल दे। लोग कहेंगे अरे तूने ये क्या किया, कभी मेरे को तो पता ही नहीं था। ये जो पता नहीं होता है उस घबराहट में, वो ये बताती है चीज कि इसके मन में कैसा उत्साह है कि आग बंद कैसे हो, अब भड़क गई उसका वो क्या करे। ऐसे हमारे परीक्षित जी बहुत ही संजीदगी के साथ पूछते हैं, नहीं तो भाई अकल तो इतनी में ही लगा लेते वो कि साहब नाना प्रकार की यातना न भोगनी पड़े, जो अंत में बोले वही बात इतनी बोल देते, पर इतनी कैसे बोले, मन के भाव कैसे रोके वो। परीक्षित जी ने सब बातें कही तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भाई अपने सब पापों का प्रायश्चित उसको कर ही लेना चाहिए। दोषस्य दृष्ट्वा गुरु लाघवं च, दोषस्य दृष्ट्वा गुरु लाघवं यथा, अपने दोषों के विषय में विचार करो, पापों के विषय में विचार करो कि मैंने बड़ा पाप किया है कि छोटा पाप किया है, कैसा किया है, जैसा पाप किया उसका प्रायश्चित तो उसको मरने से पहले पहले कर लेना चाहिए। जैसे बीमारी होती है तो वैसी उसकी इलाज होती है, जैसे बीमारी वैसा ही इलाज, ऐसे ही जैसा दोष जैसा पाप वैसा ही उसको उस पाप से बचने का उपाय कर लेना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज हमने दुनिया में देखा है लोग बहुत प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित कर भी लेते हैं फिर भी वही पाप कर लेते हैं, ये क्या बात है, पाप का प्रायश्चित, अब ऐसा पाप नहीं करेंगे, प्रायश्चित कर लिया, प्रायश्चित करने के बाद फिर वो पाप कर बैठते हैं। तो प्रायश्चित करने के बाद ऐसा क्यों होता है महाराज? जैसे हाथी है वो खूब नहा धोकर के नदी में से निकला और निकल करके वापिस वो तो मिट्टी में हो जाता है, सूंड को लिया और मिट्टी उछालने लग गया तो उसका नहाना व्यर्थ है, ऐसे ही प्रायश्चित तो उसका व्यर्थ हो गया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं बात तो तुम सही कहते हो, अब ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कर्मणा कर्म निर्धारो नहि यात्यंतिकैष्यते, अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। हम देखते हैं कि पाप कर्म हो गया, इस पाप कर्म को दूर करने के लिए एक पुण्य कर्म कर दो तो वो पुण्य कर्म से पाप कर्म हट जाएगा, कि ऐसी अज्ञानता मत रखना, ऐसा होता नहीं है। जैसे किसी आदमी में कोई आदमी 100 रुपया मांगता है, 100 रुपया मांगता है एक आदमी कि भैया हमको तुमने कहा था 2 दिन में दे देंगे, आज 15 दिन हो गए नहीं दिया, दे देंगे साहब कल दे देंगे, कल गए तो नहीं दिया। ऐसे करते 4-5 बार टहलाया तो उसको क्रोध आ गया, उसने उठा के 2-4 उसके थप्पड़ लगा दी। वो पुलिस में गया कि साहब मुझे इस आदमी ने पीटा। तो भाई आपने क्यों पीटा? कि साहब 100 रुपए उधार लिए थे, रोज रोज मुझे टहलाने लगा तो मैंने पीट दिया। कि साहब आपको तो थाने में आना पड़ेगा। क्यों? मैंने 100 रुपए लिए थे, इसको 100 रुपए दिए थे, अब 100 रुपए नहीं दे सका तो 20 रुपया कम कर दो, एक थप्पड़ के 5 रुपए काट लो, 80 रुपया दे दो। क्या देखो वो जो है तुमने 100 रुपए दिए और ये इसने नहीं दिया, ये लड़ाई करने ये जाओ, ये इसकी अलग से मुकदमाबाजी करो। तुमने इसके थप्पड़ मारा है, इसका मुकदमा अलग होगा। वहां 100 रुपए देने पर भी वो मुकदमा नहीं हटेगा कि हम 100 रुपए माफ करते हैं साहब, तभी पुलिस वाले कहेंगे नहीं आपने पीटने का अपराध किया है, वो तो दंड मिलेगा। ऐसे ही हम लोग भी सोचते हैं कि कोई हमने कर्म कर लिया, पाप कर्म हमसे हो गया तो हम पुण्य कर्म कर दो। घर में खूब सी कीड़ी मार दी, अब जहां कीड़ी नगरी है वहां जाकर कीड़े नगरा सस दो। ऐसे एक कर्म से दूसरा कर्म कभी कटता नहीं है। कर्मणा कर्म निरारो नहीं आत्यंतिक इष्यते, ये बात अलग है। आपसे गलती हो गई और आपने कीड़ी नगरा सींच दिया तो कीड़ी नगरा का सींचने का पुण्य मिलेगा, परंतु आपको कीड़ी मारने का पाप है वो उससे दब जाएगा, ये नहीं इसका पाप का फल भी मिलेगा, आपको पाप का फल भी मिलेगा, ये भी मिलेगा आपको। और क्यों होता है ऐसा, कारण क्या है? इसमें एक बहुत सूक्ष्म कारण बता रहे हैं, अविद्वद अधिकारित्वात। देखो कर्म क्यों होता है, मनुष्य के अंदर अहम बुद्धि होती है तब उसमें कर्म करने की प्रक्रिया होती है, अहम बुद्धि होती है। तो जिस अहम भाव से उसने पाप किया था उसी अहम को लेकर उसने पुण्य कर लिया, अहम भाव तो उसका ज्यों का त्यों रहा ना। अहम भाव से मतलब शरीर आदि से तादात्म्य से है, शरीर आदि के साथ तादात्म्य था तो उसने पाप किया, वही तादात्म्य रखते हुए उसने पुण्य का काम कर दिया, तादात्म्य तुम्हारा जो है मिटा नहीं। इसलिए प्रायश्चित्तम विमर्शनम, ये सबसे बढ़िया बात है प्रायश्चित्त। सबसे बढ़िया प्रायश्चित्त क्या है? तत्व पर विचार किया जाए, परमात्म तत्व पर विचार किया जाए, वो असली प्रायश्चित्त होता है। और वैसे प्रायश्चित के लिए बहुत लोगों ने उपाय बताए, तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम, दम, त्याग, शौच, नियम, उपनियम, ऐसे बहुत से हैं, परंतु इनसे वापिस भी पाप हो सकता है। परंतु एक उपाय है, क्या? केवल या भक्त्या, भगवान के शरण हो जाए। महाराज बहुत पाप किया मैंने, बहुत पाप किया, भगवान को गिना गिना करके शरण जाए, महाराज मेरे याद में ये पाप किया मैंने, ये पाप किया मैंने, ये पाप किया, सब सुना दिया जाए भगवान को, और भगवान के शरण हो जाए कि हे भगवान अब मैं आपका हो गया, मेरे मन में अब पाप करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है और आप मुझे इसका बल दीजिए। देखो परीक्षित, वो भगवान उसके पाप को वैसे ही दूर कर देते हैं जैसे सूर्य भगवान उदित होकर के कोहरे को दूर कर देते हैं, निहार में वो भास करे। भगवान यदि न मिले, भगवान के ऊपर विश्वास ना हो तो जो भगवान को प्राप्त होने वाले महापुरुष है उनके पास चले जाओ, यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेवया, तत्पुरुष निषेवया, भगवान को प्राप्त होने वाले पुरुष है। अब उसका पता नहीं चलता है भगवान को प्राप्त होने वाले पुरुषों का हम कैसे पता करें भाई। भगवान की बात सुना देने मात्र से कोई भगवान को थोड़ी प्राप्त हो गया। खूब हम आपको निर्गुण की बात बता दें, सगुण की बात बता दें, भक्ति की बात बता दें, ज्ञान की बता दें, वैराग्य की बता दें, खूब सुना दें, समझा दें, हम भगवान को प्राप्त है कि नहीं आप मालूम कर ही नहीं सकते। इसका क्या पहचान है कि भाई उसकी पहचान तो अपने को तो पता नहीं है। जो भगवान के प्राप्ति में लगने वाले महापुरुष हैं, भगवान की प्राप्ति जिनको हो गई, उनके जीवन से हमारे अंदर स्वतः ही भगवान में चलने की प्रेरणा मिले, बस अपने आप ही संसार का राग खत्म हो, स्वतः ही उन महापुरुषों को देखकर ऐसा लगे कि ऐसे हम बन जाएं, ऐसे हम बन जाएं, ऐसा मन में भाव आए। महाराज जी सबसे पहले सेठ जी के पास गए थे तो महाराज जी के मन में ये बराबर रहा कि सेठ जी जैसे कैसे बन जाए, सेठ जी से कैसे लाभ लिया जा सकता है, इन्होंने कैसे ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे हम कैसे हो सकते हैं, हम ऐसे बैरागी कैसे हो सकते हैं। ये जो भावना है ये वास्तव में जो है महापुरुष का चिन्ह है। तो कहा कि भगवान नारायण की भक्ति करने से ये सब जो है प्रायश्चित पूरा हो जाता है। देखो राजन, एक बार यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान के चरणों में अपने आप को रख देता है और हृदय से भगवान के गुणों को, प्रभाव को स्वीकार करता है, उस व्यक्ति के पास कभी भी यमराज जी के सेवक आ नहीं सकते हैं। इस विषय में एक बहुत सुंदर दृष्टांत है, वो दृष्टांत सुनाते हैं कि कन्नौज के अंदर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल बहुत बढ़िया ब्राह्मण था, परंतु संसर्ग दोष के कारण से वो ब्राह्मण बहुत नीचा पतित हो गया। एक दासी के साथ, दासी वेश्या के साथ में संग करने से बहुत पतित हो गया। वो लूटना, बंधक बनाना, डाका डालना, ऐसी ऐसी उसकी वृत्तियां हो गई, जो एक अवगुण से अवगुण पूर्ण काम हो सकते हैं वो सब निकृष्ट से निकृष्ट काम पर वो उतारू हो गया। एक बार की बात है, उस गांव में एक संत आए, संतों की मंडली आई, तो लोगों से पूछा कि भोजन करने के लिए कोई अच्छा ब्राह्मण का घर मिलेगा, तो मजाक में कह दिया महाराज वो सामने अजामिल का घर है, बहुत अच्छा घर है, आ जाओ, पवित्र ब्राह्मण है। बिचारे संत चले गए, भूखे प्यासे थे। घर में जाते ही अजामिल, तो भाई उस समय उसके पास तो बोतल थी, बोतल से तो पानी पी रहा था, कौन सा पानी, मैला पानी, मदिरा पिया हुआ। और वहां संत आ गए, पुराने जमाने जैसे तो घर होते नहीं थे, घंटी बजाओ फिर कोई आदमी आए, ऐसा तो था नहीं, सीधे घर होते थे तो चले आए बेचारे। वहां पर वृक्ष की छाया में बैठ गए। अजामिल देखे कि मेरे यहां संत कैसे आए। संतों ने कहा कि अजामिल जी आप ही हैं क्या? हां साहब, ये नाम तो मेरा ही है। तो देखो जी, हम बहुत दूर से आए हैं और आगे हमको बहुत दूर जाना है, पैदल पैदल ही आए और पैदल पैदल ही जाना है, तो हमको बहुत भूख लगी है। हमने लोगों से पूछा कि कोई पवित्र ब्राह्मण हो तो हम कुछ भोजन करें, तो आप हमको भोजन करा दीजिए, हम भोजन करने आए हैं, आपका नाम सुन के आए, भाई मर्जी से तो आए नहीं। अजामिल देखता रहा, अजामिल सोचा ऐसे महात्माओं की बुद्धि मुझे भ्रष्ट थोड़ा ही करनी है, मेरे घर का अन्न तो महान पतित का अन्न है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ये बिचारे भगवान का भजन करने वाले, इनका मन दूषित हो जाएगा। अब वो हाँ भी नहीं कर सके और भूखे हैं, वो संत भूखे हैं, वो ना भी नहीं कर सके, क्या करे। वो उसने नीचा सिर कर लिया और कुछ नहीं बनते है, उसके आंख से टप टप आंसू गिरने लगे। संतों ने कहा अजी आजाविल जी, हम किसी को दुखी करने थोड़ी आए हैं, आपके आंख से तो आंसू गिर रहे हैं, क्या हमसे कोई गलती हो गई, क्या बात है। ऐसे करते 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 अजामिल से खूब प्यार से पूछा ना, वह संतों की कृपा घुस गई उसकी। संतों ने कृपा की, बहुत प्यार से पूछा, उसका वो अंदर का जो दुख था वेदना जी फूट पड़ी कि महाराज मैं बहुत पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं बहुत अच्छा ब्राह्मण था, सदाचारी था, लेकिन महाराज ऐसे अब संतों के सामने सारे पाप प्रकट कर दिए। सब पाप सुनने के पश्चात संतों ने कहा कि भी अजामिल जी, अब हम आपको कुछ बात बताएं, आप मानोगे? नहीं महाराज, आप हमको मालूम है क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि इस वेश्या को यहां से निकाल दो, दासी को निकाल दो, ये मेरे से संभव नहीं है। संतों ने कहा ये हम नहीं कहेंगे, और आप ये कहोगे कि मदिरा मत पियो, ब्राह्मण होकर के तुम मदिरा पीते हो, बड़ा भारी पाप करते हो, कि ये भी नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे, तो आप जो कहोगे सो करने के लिए तैयार है, वो अच्छी बात है। आपकी कोई संतान होने वाली है, हमारा संतान होने वाली, उस संतान का नाम नारायण रख देना बस, उस संतान का नाम टिप्पूर पिप्पूर बबलूर टबलूर केरे क्या पता क्या क्या नाम हो, ये नाम मत रखना, तो उन्हें नारायण नाम रख देना, कि महाराज नारायण नाम रख दूंगा। ठीक, संत चले गए। देखो संतों ने वहां पर भिक्षा तो नहीं पाई, लेकिन आज संतों ने बहुत बड़ी चीज पा ली, संतों का मन तृप्त तो हो गया। संत कोई रोटी से राजी थोड़े ही होते हैं, संत होते हैं किसी के, कोई आदमी कल्याण के मार्ग पर चलता है उससे राजी होते हैं। देखो हम लोग यहां बैठे ही भागवत की कथा कहते सुनते हैं, तो भाई अव्यक्त रूप से संतों की हमारे पर कृपा बरसती है, अव्यक्त पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है कैसे कृपा होती है, क्या होता है पता नहीं चलता, पर बरसती है कृपा महात्माओं की। अब जो है अजामिल जी के वो लड़का हुआ, उसका नाम उन्होंने नारायण रख दिया। अब क्या पता क्या परीक्षित उस बालक पर उनका मोह हुआ, जो मोह हुआ, वो उठे तो बैठे तो चले तो फिरे तो आवे तो भुंजान है प्रविधन खादन नारायण नारायण इधर आओ नारायण इधर आओ नारायण इधर आओ, ऐसे करते करते एक दिन में जाने कितनी बार उसके द्वारा नाम ले लिया गया। रोज नाम लेता है, अरे नारायण ऐसा करो नारायण ऐसा करो नारायण वैसा करो, ऐसे करते 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 वो नारायण के अंदर मोहित हो गया, और एक दिन उसकी मृत्यु का समय आया। मृत्यु का समय है तो पास में तीन पुरुष आए यूं दांत निकाले हुए, और ये ऊपर से यहां नाभि तक नग्न और घुटनों तक तो कुछ पैर रखा है काला काला कपड़ा, और फिर नीचे कुछ भी नहीं पैर रखा है, हाथ उनके शस्त्र है, गदा वगैरह है, पाश है, पाश रस्सियों का पाश, और जो है वो उर्ध रोमा है, बाल खड़े हुए आंख निकाले हुए डराते हुए, अजामिल तुम्हारा नाम है, हम तुमको लेने के लिए आए हैं, हम यमराज जी के दूत हैं, तुम्हारे पापों का हम तुमको बहुत दंड देंगे, ऐसा करके वो डराती हुई वाणी में बोले, तो घबरा गया बेचारा। अब देखो ये यमराज जी की वाणी दूतों की वाणी है ना, ये उन्हीं पुरुषों को सुनाई देती है जो जो भाई जाने के लिए यमराज जी के चंगुल में फंसने के लिए होते हैं। अब वही वो क्या हुआ कि वो बकने लगे जोर जोर से, तो घबरा गया, घबरा कर और तो कुछ याद नाम आया नहीं, और वो जो नारायण बेटा था नारायण 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 ऐसे बोलने लगा वो घबरा करके, वो नारायण नारायण नाम आया तो नारायण चार अक्षर थे, तो चार अक्षर के कारण से भगवान के चार पार्षद वहां आ गए, बड़े सुंदर पार्षद, बड़ी सुंदर उनकी आंखें, बड़े सुंदर उनके वस्त्र, और वो आते ही धक्का मुक्की करने लगे उनके साथ, कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्यों अजामिल को ले जाते हो, हम तुमको नहीं ले जाने देंगे, ऐसे वो बोलने लगे। तो यमदूतों ने कहा अरे भाई दिखने में तो बड़े सुंदर लगते हो, पर तुम हमको पहचानते नहीं कि हम कौन है, हम यमराज जी के दूत हैं, धर्मराज के दूत हैं। अच्छा, धर्मराज के दूत हो तो बताओगे कि धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म की उत्पत्ति कहां से होती है, आप लोगों को धर्म का ज्ञान कैसे होता है, तुम तो धर्म जानते हो तो बताओ। कहने महाराज, वेद ने जिस बात को करने के लिए कहा है वो धर्म है, और वेद ने जिस बात को न करने के लिए कहा है वो अधर्म है, और उसी धर्म अधर्म के द्वारा लोगों को अच्छे बुरे मिश्रित कई प्रकार के शरीर उनको मिलते रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले उनको अच्छा शरीर मिलता है, बुरे कर्म करने वाले उनको बुरा शरीर मिलता है, ये तो होता ही रहता है। और देखने के लिए, धर्म का ज्ञान करने के लिए सूर्य है, अग्नि है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, और क्या बताए, संध्याएं हैं, दोनों समय की चंद्रमा है, दिशाएं हैं, ये सब कंप्यूटर है हमारे, इनसे हम धर्म का निर्णय कर लेते हैं। बनारस में जाते काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने, कंप्यूटर लगे हुए हैं, कौन आदमी जा रहा है उसका दूर से बैठे हुए दर्शन कर लेते हैं, कौन आदमी जा रहा है क्या कर रहा है, दर्शन हो जाए वो आदमी का पूरा ज्ञान हो जाता है, वो देख कंप्यूटर से देख लेते हैं। तो भाई ऐसे ही इन 14 चीजों से हम धर्म का ज्ञान कर लेते हैं, और संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जो कुछ भी काम नहीं करता हो। येन यावान यथा धर्मो धर्मो वे समीहत है, धर्म करेगा या अधर्म करेगा उसका भाई उसका फल ही इस लोक में परलोक में उसको मिल ही जाता है। तो वर्तमान जो जन्म होता है वह उसके भूतकाल के जन्म को बताने वाला होता है और भविष्यत काल को भी बताने वाला होता है। जो आदमी पाप करता है इसका मतलब पहले भी पाप किया है, जो आदमी पुण्य करता है इसका मतलब फिर पहले भी इसने पुण्य किया है, तभी तो उसके अंदर वो संस्कार है। कर्म करने की सामग्री क्या है कि पंचमी कुरते स्वार्थान पंच वेदाथ पंचमी 16 चीज है, 11 तो इंद्रियां, मन सहित 11 इंद्रियां और 5 प्राण, ये 16 है, 17वां ये जीव खुद है। तो ये 17 चीजों का, या मन बुद्धि कर लेते कहीं, मन बुद्धि को मानने बुद्धि है, 17 चीजों का सूक्ष्म शरीर होता है, इसमें सब कर्म इकट्ठे होते हैं। ये पहले बड़ा पवित्र ब्राह्मण था, माता पिता की आज्ञा का पालन करता था, हवन करता था। एक बार हवन की सामग्री लेने जंगल में गया, वहां जाकर के और उसने एक शूद्रा को शूद्र के साथ देख लिया, तो उसके बाद इसका भी चित्त है उस शूद्रा के अंदर लग गया, तो उसने माँ बाप को भी घर से निकाल दिया, स्त्री को भी घर से निकाल दिया, और ये बहुत पाप करने लगा। अब हम इसको यमराज जी के लोक में ले जाएंगे ताकि उसको दंड दिया जाएगा, फिर ये शुद्ध हो जाएगा। विष्णु भगवान के दूतों ने कहा कि राम 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 राम, आप लोग धर्मराज के यहाँ रहने वाले और आप लोग भी धर्म अधर्म का निर्णय नहीं करेंगे तो फिर दुनिया को धर्म अधर्म का निर्देश देने वाला दूसरा कौन हो सकता है भाई। आपके भरोसे सब निश्चिंत बैठे और आप लोग भी इस बात को समझते नहीं है, कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। यद्यदाचरति श्रेयान इतरस्तत्तदीयते, बड़ा पुरुष जो काम करता है दूसरे भी वैसा ही करते हैं, और बड़ा पुरुष जिसको प्रमाणित कर देता है लोग वैसा अनुवर्तन करते हैं। तो आप बड़े आदमी होकर के गलत काम करते हो। आप कहते हैं आपने इसके एक जन्म का पाप बताया, हम कहते हैं सुनो यमदूतों, इसके द्वारा करोड़ों करोड़ों जन्मों का सबका सब पाप भस्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तुम गड़े मुर्दे को क्यों उखाड़ते हो। क्या महाराज ऐसा कैसे हुआ कि बिल्कुल ठीक बात है, हम सही बात बोलते हैं, क्यों तुम कितना पाप बताओगे इसका, हम तो करोड़ जन्मों के पाप, और पापों में भी महापाप क्या, ये 5 उग्र पाप, सोने चांदी की चोरी करना, मदिरा पीना, विश्वासघात करना, ब्रह्म हत्या करना, गुरु पत्नी गमन करना, स्त्री हत्या करना, राज हत्या करना, पिता की हत्या करना, माँ बाप की हत्या करना, गाय की हत्या करना, और भी कितने भी पाप है, वो सारे पाप इसके नारायण नाम उच्चारण करने मात्र से समाप्त हो गए। इसलिए ऐसा इसका पुण्यमय जीवन है। क्या बात करते हो यमदूतो, भगवान का नाम तो कोई संकेत से भी लेवे, कोई मजाक में भी लेवे, कोई गिरता पड़ता भी लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई आदमी दवाई लेता है, दवाई को जानता नहीं है वो, ये दवाई ले रही जल के साथ ये कैप्सूल ले लो माँ जी। अब बूढ़ी माँ जी कोई अंग्रेजी जानती नहीं, लिख दिया डॉक्टर ने, दुकान पर गई माँ जी, गई कि भैया अभी दवा है, घास अभी है, पानी में लेनी है, ठीक है, वो दवा क्या है क्या नहीं कुछ माँ जी को कुछ भी पता नहीं है। माँ जी उस दवाई का नाम भी नहीं जानता, वो टेबलेट नहीं बोल सकती माँ जी, माँ जी कैप्सूल शब्द नहीं बोल सकती कि एक ताबीज दियो मन, एक ताबीज ताबीज वाली दवाई ले, एक टिकिया ले, वो पानी से ले, माँ जी दो तीन दिन में स्वस्थ हो गई, ठीक हो गई, हो गई। दवाई को नहीं जानती है, परंतु दवाई लेने से जैसे दवाई का प्रभाव स्वतः पड़ता है, रोगी के जानकारी का उससे कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही भगवान का नाम चाहे जान करके ले हो, अनजान पर में ले हो, कैसे भी ले हो, भगवान का नाम तो अपनी शक्ति से निश्चित कल्याण करता है, भगवान का नाम उसके पाप को निश्चित भस्म करता है। हे यमदूतो, तुमको कोई अधिकार नहीं है इसको ले जाने का, छोड़ो इसको, ऐसे करके उन्होंने बलपूर्वक छोड़ा दिया और उनको वहां से मारपीट करके भगा दिया। यमराज जी के दूत तो भग गए। अब भगने के बाद में हमारे वो अजामिल जी हैं, वो देखते रहे। अजामिल ने तो साफ नजारा देखा कि अरे भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव, मैंने तो बेटे का नाम लिया था, भगवान का समझ के नाम लिया ही नहीं, बेटे का नाम लिया भले ही लो, लेकिन यहां तो उन्होंने कहा ना कि जो आदमी समझ से बेसमझ से नाम लेता उसका तो कल्याण होता है। अब वो अजामिल इस दृश्य को देखकर इतना प्रभावित हुआ, वो भर गया करुणा में, और वो अजामिल बोलने के लिए ऐसा कुछ करने लगा, इतने में भाई वो तो वहां से गायब हो गए, विष्णु दूत गायब हो गए। उनके गायब होने के बाद उसके मन में बड़ा संताप पैदा हुआ, अनुतापो महान आसीत। देखो ये जीवन में गलती हो जाए उसके लिए इतनी परवाह मत करो, हो गई अनजान में गलती हो गई, पर गलती के बाद प्रायश्चित होना चाहिए, संताप होना चाहिए, उस संताप की अग्नि में पाप जलता है। वो संताप करने लगे मन में बहुत दुखी होकर के, ओहो मैं कैसा पवित्र ब्राह्मण था और मैंने सारे ब्राह्मण धर्म का लोप कर दिया, धिक्कार मुझे, मैं तो अपने कुल का काजल हूं, कुल का कलंक हूं, बूढ़े मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से कठिनाइयां सह सह करके पाल पोष करके बड़ा किया, माँ की कितनी आशा रखती है पुत्र से, पुत्र बड़ा होगा, मुझे माँ माँ कहकर के मेरे पास बैठेगा, मेरी सेवा करेगा, ऐसे ही माँ बाप हमको मिले, उन अनाथ माँ बाप को मैंने घर से निकाल दिया, मैं नरक में जाऊंगा, भयंकर नरक में जाऊंगा, ऐसी नरक में यातना धर्म का नाश करने वालों को तो मिला ही करता है। आज मैंने क्या देखा, ये स्वप्न देखा है कि क्या, नहीं स्वप्न नहीं देखा है, स्वप्न में ये थोड़ा ही बोध रहता है, स्वप्न में तो ये भान ही नहीं रहता कि ये स्वप्न है, स्वप्न में सब कुछ प्रत्यक्ष दिखता है, लेकिन मैं तो स्वप्न वृत्ति से भी देख रहा हूँ, स्वप्न नहीं साक्षात है, चार महापुरुष आए, ओह इन्होंने मेरा जीवन बचाया, इन्होंने मेरा पाप नहीं देखा। देखो कैसे भगवान के दयालु पार्षद हैं। यमराज जी के दूतों ने बात तो सही की थी, मेरे जीवन में पाप बहुत किया, परंतु विष्णु दूतों ने मेरा पाप देखा ही नहीं, और मैंने जो नाम लिया पुत्र के बहाने से नाम लिया, उस नाम को लिया और मेरे सारे पापों का अभाव देख लिया उन्होंने, ओहो ऐसी उन्होंने मुझ पर कृपा की है तो मैं अब ऐसा होकर के ही रहूंगा। एक स्त्री का क्रीड़ा मेरी खिलौना होकर के मेरे जीवन खराब किया, शरीर में मैं और मेरापन का अध्यास करके मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा विचार करके वो अपने घर से सीधा रवाना होकर गंगा के तट पर चला गया। किसी से सलाह नहीं ली, स्त्री से सलाह नहीं ली, बेटे से सलाह नहीं, रवाना हो गया। अब तो यही करना है सो करना है। निश्चय कर लेने के बाद कठिन से कठिन काम भी सुगम हो जाता है और दृढ़ निश्चय के बिना सुगम काम भी कठिन रह जाता है। वो तो रवाना हो गए, निर्वेद हो गया, बैराग्य हो गया, क्यों रहते वहां, चले आए गंगा जी के तट पर चले आए। वहां बैठ करके उन्होंने बड़े विरह में बैठ कर भगवत का नाम लिया। बार बार याद आए, ऐसा ऐसा मैं पापी और उनके नाम से मैं उनके भक्तों के द्वारा मैं प्रमाणित हो गया कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मेरे सारे पाप भस्म हो गए। अब वो विरह में डूबा हुआ, अनुराग में डूबा हुआ, भगवान की कृपा का सारा लिए हुए नाम लेने लगा। लेते 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 वो इतना द्रवित हो गया, इतना वो आनंद में डूब गया कि वे ही पार्षद जो उससे बात करने में कतराते थे, हो वे ही पार्षद एक सोने का विमान लेकर के उसके पास आए कि अजामिल जी आपको बैकुंठ से निमंत्रण मिला है, विराजमान होइए आप इस बैकुंठ आप इस विमान में। अजामिल जी ने कहा रे ये तो वही पार्षद है। अजामिल जी गंगा जी में गए, डुबकी लगाई, डुबकी लगाते वो शरीर तो उनका जाने कहां गया। चार भगवान के पार्षद थे, ये पांचवें पार्षद के रूप में चतुर्भुज रूप से हमारे अजामिल जी गंगा जी में से प्रकट हुए और उनके साथ वे भगवान के धाम में चले गए। तो देखो परीक्षित, ये भगवान के नाम का प्रभाव है। नरक में जाने वाला था, हतम व्रत, अपने सारे व्रत वगैरह उसने समाप्त कर दिए थे, ऐसा भी व्यक्ति भगवान के धाम में जा सकता है नाम के प्रभाव से। सुनो ये कथा मैंने मेरी तरफ से नहीं कही है परीक्षित, ये कथा हमको जो है हमको सुनाई है, हमको एक ऋषि ने सुनाई है ये कथा, बड़ी विचित्र कथा। ये हमको अगस्त ऋषि ने सुनाई है, मलयाचल पर्वत पर सुनाई है। इस कथा को जो सुनता है, इस कथा को श्रद्धा से धारण करता है, वो फिर नरक के अंदर नहीं जा सकता और उसके कोई पाप हुए भी होंगे उन पापों को देखने का यमराज जी को कोई अधिकार भी नहीं रहता है। विचार करो परीक्षित गहराई से कि अजामिलो प्यगा धाम पुत्रोपचारितम घृणन, पुत्र के बहाने से भगवान का जो नाम लिया उसके प्रभाव से अजामिल को कितना ऊंचा स्थान मिला। किम पुनः श्रद्धया घृणन, ये घृणन क्रिया दोनों आ रही है। ये तो श्रद्धा से नाम लेता है, उसकी क्या दशा होती होगी श्रद्धा से लेते हैं। राजा कहने लगे महाराज आपकी कथा से हमको बहुत बड़ी प्रेरणा तो मिली, एक बात हम आपसे पूछते हैं कि यमराज जी के वहां, ठीक है भाई, यमराज जी के वहां जो है ये खाली हाथ गए होंगे यमदूत, तब उनको यमदूतों को यमराज जी ने फटकारा होगा, खूब डांटा होगा, क्योंकि यमराज जी तो कभी भी अपने आदेश का उल्लंघन देख भी नहीं सकते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये भी सुन लो तुम, जब ये यमदूत अपने स्वामी यमराज जी के पास गए तो उन्होंने बड़े सरलता के साथ कहा कि महाराज इस संसार के संचालन में क्या और भी कोई पुरुष है, क्या और का भी कोई अधिकार चलता है, क्या शासन चलता है क्या? यदि बहुत लोगों का शासन चलेगा तो वहां शासन व्यवस्था चलेगी नहीं। आपसे भी बड़ा कोई संसार में है? हमको तो बड़ा आश्चर्य हुआ, हम अजामिल के पास गए और हमने अजामिल के ऊपर वो पाश फेंका, जाड़ फेंका और उसके अंदर से प्राण ले ही रहे थे, वो जोर से चिल्लाया
नारायण 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 आओ नारायण आओ, ऐसे जोर से चिल्लाया। उसी समय में चार एक अद्भुत प्राणी हमारे सामने आए और उन्होंने हमारे से धक्का मुक्की की। अरे तुम कैसे ले जाते हो अजामिल को, ये अजामिल कोई पापी नहीं है, करोड़ों जन्म का पाप इसका नष्ट हो गया है। ऐसा करके हमारे हाथ से उन्होंने तत्काल छीन लिया, वो पास छीन लिया। ऐसा करते हो अजामिल जैसे को ले जाते हो, मानो वो ऐसा हमको डांटने लगे जैसे कोई अजामिल बहुत बड़ा धर्मात्मा महात्मा हो और हम कोई गलती से पहुंच गए हो और उन्होंने हमको डांट पीट करके मार पीट करके भगा दिया। तो महाराज हम तो अजामिल को नहीं ला सके। ये बात सुनते ही यमराज जी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, अरे मेरे दूतों, मेरे इस लोक के अंदर आज मैं जब से बैठा हूं तब से पहली बार नारायण नाम सुना है। तुमने नारायण नाम उच्चारण करने वाले अजामिल के दर्शन किए, बड़े भाग्यशाली हो मेरे दूतों, तुम बहुत भाग्यशाली हो। आंख बंद करके हाथ जोड़ करके यमराज जी ने भगवान के चरणों का ध्यान किया। ऐसे कोमल चरण है, भगवान के चरण कोमल क्यों है? वो कोमल इसलिए है कि भगवान कहते हैं मेरे चरणों में आ जाओ, जैसे मेरे चरण आपको कोमल लगते हैं ऐसे कोमल भाव से मैं आपका कल्याण करने के लिए तैयार हूं। ओ कोमल कोमल चरण उनका ध्यान किया। कहने लगे अरे मेरे प्यारे दूतों, मेरे से बड़ा एक मेरा परमात्मा है, मैं हूं, इंद्र है, देवता है, सब उसके वश में है, परंतु उनको इन आंखों से देखना चाहोगे तो नहीं देख सकते। उसको देखना हो तो अपने आप से अपने आप के द्वारा ही देखा जाता है। देखा ना उस मेरे प्रभु का प्रभाव कि तुम तो तीन थे, उसने जीवन में पहली बार नारायण चार अक्षर का नाम लिया तो चार भगवान के पार्षद आ गए तुमको। देखो ऐसे पार्षद सदा साथ में घूमते रहते हैं भगवान के भक्तों के पास, जहां कहीं भक्तों पर कोई कष्ट आएगा वहां तत्काल उनकी रक्षा करने वाले वो मिल जाएंगे। ऐसे भगवान को कौन जान सकता है भाई, ये 12 लोग जानते हैं जिसमें एक मैं भी हूं, नारद जी है, शंकर जी है और पितामह भीष्म है, प्रह्लाद है, व्यास नंदन सुखदेव जी है और हम हैं। भगवान की भक्ति का प्रभाव देखा, अजामिल ने पुत्र का नाम लिया था, उससे देखो भगवान खुश हो गए। देखो कैसे भगवान कोमल है, कोमल चित्त वाले, चरण कोमल, नेत्र कोमल, अंग अंग कोमल और उनका हृदय कितना कोमल हो सकता है। देखो आज से नियम बना लो, जो व्यक्ति मानव शरीर प्राप्त किया हुआ है, जिसने भगवान की कथा को जीवन में एक बार भी सुन लिया है, जिसने अपने मुख से भगवान के नाम का उच्चारण किया है, ऐसे पुरुष की यदि कोई पाप होते भी हो, नैषां वयम् न च वयः प्रभवाम दण्डे, ऐसे व्यक्तियों को दंड देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। तानानध्वम् आप उनको अलाओ, तान आनयध्वम् असतो विमुखान मुकुंद पादारविंद मकरंद रजाद अजस्रम विमुखान, भगवान के चरण कमलों के रस को जिन्होंने आज तक पिया नहीं है उनको लाओ धड़ल्ले से, देओ उनको दंड। महापुरुषों के पास में जाकर जिन्होंने ज्ञान की चर्चा नहीं सुनी उनको लाओ, जिनकी जिह्वा मिली है भगवान के नाम के लिए लेकिन भगवान का नाम का उच्चारण नहीं करते और पर निंदा करते हैं उनको लाओ, जिनके चित्त में भगवान नहीं बसे हुए उनको लाओ, और जिनका सिर भगवान के सामने झुकता नहीं है, माँ बाप के चरणों में जिनका सिर झुकता नहीं है, बड़े पुरुषों का सिर झुकता नहीं उनको लाओ, बड़े पुरुषों के सामने जिनका चरण जिनका सिर नहीं झुकता उनको लाओ। यहां सारे यमलोक के अंदर सबको चेतावनी देते हुए हमारे यमराज जी भगवान से कहते हैं तत्क्षम्यताम स भगवान पुरुष पुराणो, हे भगवान आप मुझे क्षमा कर देना, ये बेचारे अबोध मेरे सेवक थे जिन्होंने आपके भक्त का अपमान किया, महाराज आप क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, ऐसे उन्होंने क्षमा मांगी है। तो भाई ऐसे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो भाई वो संसार में दोबारा नहीं आता है। ऐसी ये पवित्र कथा हमने अगस्त ऋषि से मलयाचल पर्वत पर सुनी थी। हम सब लोग ऋषि लोग बैठे हुए थे और वे अगस्त ऋषि भगवान की पूजा करते करते बहुत हृदय से उनकी ये बात निकली, अजामिल उपाख्यान सुनाया, वो हमने तुमको सुना दिया है। अब राजा जो एक प्रश्न करते हैं बहुत पीछे का प्रश्न कि महाराज आपने प्रचेता गणों के विषय में बताया था, उन प्रचेता गणों का पुत्र बना था हमारा दक्ष प्रजापति, अब उसका कैसे क्या विस्तार हुआ, सृष्टि का कैसे विस्तार हुआ, वो हमको विशेषता से बताओ। तो भाई हम
20 मिनट करें 30 मिनट है
विचार, तो भाई 20 मिनट ही करें, 30 मिनट का करो तो भाई 10 मिनट ज्यादा ही सही, 30 मिनट का अपने मध्यम विश्राम करते हैं, फिर उसके बाद में आगे की कथा। आज नृसिंह भगवान का अवतार करना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण।